गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। इताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। श्रीमन नित्यानंद प्रभु तिथि कथा महामहोत्सव की
हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्कार सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदे तदप्यस्य तनुभा यात्मान्तर्यामि पुरुषयति स्वस्यांश विभवः। षडैश्वर्यः पूर्णो यः भगवान् सा स्वयमयम् न चैतन्या कृष्णा जगति वरतत्त्वं परं आजानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ सङ्कीर्तनैकपुत्रौ कमलाय साक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्या छवि सुन्दरा तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचरितये
और प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली वही सिस्टम फॉलो किया। जय सरिंदम। नित्यानंद प्रभु को मांगा था, फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? क्योंकि वो सन्यासी ने शरीर छोड़ दिया था बीच में। अद्वैताचार्य जी की फीस्ट, क्यों बोला? सची माता ने उनको जगन्नाथपुरी जाने के लिए मैसेज आता रहेगा। वेरी गुड। तीन महीने तक कीर्तन चलता रहा, याद है कीर्तन पार्टी तीन महीने वाली किया किसी ने? यस। और अरे इधर किसी को कुछ याद नहीं है क्या? यस। यस, महादेवेंद्रपुरी जी प्रेम का बीज लेके आए। छह कोस मतलब हो गया आपका 12 मील दूर। यस। मतलब जो लीलाएं करते थे वो एकदम लाइव होती थी। महाप्रभु ने उनको भेजा विवाह करके करने के लिए कि तुम सब जगह प्रचार कर पाओगे, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है उसके लिए हर जगह जाकर के प्रचार करना बहुत आसान है, सब लोग नहीं कर पाएंगे। और महाप्रभु को चिंता थी कि कलयुग में अगर सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने संन्यास लिया, इसने भी संन्यास लिया, संन्यास लेके सब जगह प्रचार करेंगे तो उनका पतन हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु को कोई दिक्कत नहीं थी, वो संन्यास आश्रम में रह के भी सब जगह जा सकते थे। जैसे शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ने माताओं को साड़ी पहनाना सिखाया, सन्यासी है पर शिला प्रभुपाद महाभागवत है, तो इसलिए महाप्रभु ने बोला कि ज्यादातर लोग ऐसे ही प्रचार कर पाएंगे, ज्यादा लोग प्रभुपाद जी जैसे नहीं आएंगे, एक दो लोग ही आएंगे प्रभुपाद जैसे। और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को घुमा दिया, सही किया। क्यों किया ऐसा नित्यानंद प्रभु ने? अरे बच्चों आपको पता है, मेरे को पता है, ये तीन पंडित बैठे हमारे आगे, वो एक पीछे भी है, अरे एक पंडित इधर है, ये हमारे पंडित जी क्लास के। किस लिए? नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को घुमाया। हाँ हाँ, वो महाप्रभु की अंतरंग इच्छा को जानते हैं। तो ये है श्रीमद नित्यानंद प्रभु की अद्भुत लीला है। और ये हमने कुछ लीलाओं की चर्चा करी, और चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रत्नाकर में, प्रेम विलास में, नरोत्तम विलास में, वैदग्ध विलास में, और ऐसे कई सारे और ग्रंथों में नित्यानंद प्रभु की गुण लीलाओं का भंडार है। पर हम लोगों के पास समय की सीमा है, इसलिए हम कुछ ही लीलाओं की चर्चा कर पाए, नहीं तो नित्यानंद प्रभु के अवधूत होने पर भी कितनी लीलाएं, उनकी कृपा बरसाने पर भी कितनी लीलाएं, वास्तव में सारी लीलाएं कृपा ही है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी लीलाओं पर ज्यादा चर्चा ना करके आज हम चर्चा करेंगे कि नित्यानंद प्रभु है क्या चीज, क्या स्पेशल पर्सनैलिटी है वो। मैं जब शुरू शुरू में ज्वाइन किया था तब तक मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब भक्तों के समाज में आने से पहले, दूसरे इस्कॉन के भक्तों के आने से समाज में पहले सब जगह जाते थे हम और भी, तो फाइनल कंक्लूजन पे हम आए थे कि इन तीनों लोगों में सबसे ज़्यादा कोई मर्सीफुल है, सबसे ज़्यादा कोई करुणामय है, तो वो है श्रीमती राधारानी। यहाँ आके पता लगा उनसे भी ज़्यादा कोई मर्सीफुल होता है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु करुणामय, करुणा अवतार। बहुत हैरान होते थे हम, कैसे नित्यानंद प्रभु राधा रानी से भी ज्यादा कोई मर्सीफुल कैसे हो सकता है, उनसे ज्यादा कोई मर्सीफुल नहीं है, कैसे उनसे भी ज्यादा कोई मर्सीफुल हो सकता है। तो भक्त बताते थे क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु है इसलिए। फिर हमने जब देखा तो ऐसा पढ़ने में आया कि नित्यानंद प्रभु हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम जी है, बलराम जी तो हर प्रकार से कृष्ण की सेवा नहीं करते, कुछ ऐसी स्थितियां भी ऐसी आती है जिसमें बलराम जी सेवा नहीं करते। फिर एक बार श्रीपाद आयंगर प्रभु ने उसका उत्तर दिया कि कैसे श्रीमद् नित्यानंद प्रभु सबसे ज्यादा मर्सीफुल है। और उनके उत्तर को प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने बातें बोली उनको ढूंढना शुरू किया कि लिखी कहाँ पे है। आयंगर प्रभु तो जनरली ऐसा नहीं करते थे कि वो श्लोक कोट करेंगे, वो बोलते आई एम नॉट गोना क्रैक द जोक्स एंड पुट द श्लोक्स, आई एम गोइंग टू हिट फ्रॉम द हिप। सो प्रभु जी ने कुछ बातें बोली, पर फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ है ये बातें जो प्रभु जी ने बताई। और ठाकुर जी ने हम पे कृपा करके हमारे को वो ग्रंथ भी दिलाए जहाँ पे वो बातें लिखी। तो आज हम उन सब विषयों पे चर्चा करेंगे कैसे है नित्यानंद प्रभु मर्सीफुल और कैसे ये कृष्ण की सब प्रकार से सेवा करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में जब नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन आ रहा है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्वरूपे कृष्ण सेवानंद अस्वदान से बलराम गौर संगे नित्यानंद। सब बोलिए, सर्वरूपे कृष्ण सेवा करे अस्वदान, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। सर्वरूपे कृष्ण सेवा करे अस्वादाना,
सर्वरूपे कृष्ण सेवा करे अस्वादाना,
से ही बलराम गौर संगे नित्यानंद। वो बलराम जी जो हर प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, हर प्रकार से। हम परिचर्या बोलते हैं ना, परिचर्या, या किसको बोलते हैं परिचर्या, अर्चन विधि को। वास्तव में परिचर्या का अर्थ है, चर्या का मतलब सेवा और परि का मतलब परि, हम जैसे परिक्रमा करते हैं, क्रमा चलना चारों ओर से, हर ओर से चलना। तो परिचर्या का अर्थ है हर प्रकार से, हर दिशा से, हर रूप से कृष्ण की सेवा करना, दैट इज कॉल्ड परिचर्या। तो वास्तव में हम में से किसी में सामर्थ्य नहीं है परिचर्या करने का, हम हर प्रकार से श्री कृष्ण चरणों की सेवा नहीं कर सकते, पर बलराम जी हर प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और वही बलराम जो, वो बलराम जो हर प्रकार से कृष्ण की सेवा नहीं करते वो नित्यानंद नहीं है, वो बलराम जो हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं वो है नित्यानंद। सही बलराम गौर संगे नित्यानंद, बलराम जी के कई रूप हो सकते हैं। तो बलराम जी का वो फॉर्म जो कि हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं वो है नित्यानंद। इसलिए श्रीमद् नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखा है, जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्व सेव्य कलेवार। जय हो महाप्रभु श्री गौरांग हरि की जय हो। जय हो श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, जिनका देह जो है कलेवर, मतलब जिनका देह केवल एक ही चीज के लिए बना है, कृष्ण सेवा के लिए बना है, सर्व सेव्य। और श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की जो देह है हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करती है, सर्व सेव्य। जितनी भी कृष्ण की सेवाएं हो सकती हैं, श्रीमद् गौरा हरि की सेवाएं हो सकती हैं, वो सारी सेवाएं उस देह से होती हैं। इसीलिए सर्व सेव्य कलेवर, सारी सेवाओं का वो जो देह बना हुआ है सेवाओं से बना हुआ है। वो जो शरीर है, जैसे हमारा शरीर किससे बना हुआ है, अर्थ वाटर एयर फायर इथर, हाँ ये सबसे बना हुआ है। पर श्रीमद् नित्यानंद प्रभु का शरीर किससे बना हुआ है, सेवा 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 सेवा, दैट्स इट, सेवा। इसलिए उनका एक नाम है सेवक भगवान है, तो वो भगवान पर सेवक भगवान। जबकि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, गौर निताई में कोई भेद नहीं है, परंतु तो फिर भी निताई क्या है, सेवक भगवान है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे सब प्रकार से सेवा करते हैं। सब प्रकार से सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा कितने प्रकार से होती है। हम सब यहाँ पे काफी पुराने घर बैठे हैं, हमें बताएंगे कितने प्रकार से भगवान की सेवा होती है। हाँ, स्पेसिफाइड। अच्छा ठीक है, नहीं वो जो अंग है वो श्रवणम कीर्तनम ये सब क्या है, भक्ति के अंग है। पांच स्पेसिफिक तरीके हैं जिससे भगवान की सेवा होती है, बताओ क्या है। शांत, दास्य, साठ्य, वात्सल्य और माधुर्य अथवा शीला। इन पांच प्रकार से भगवान की सेवा होती है। और हाँ वो तो फिर वो है क्या नाम है, गौण है, गौण रस है। और वो इसी के वो जितने भी सात गौण रस इत्यादि हैं वो सब इनमें से किसी पर्टिकुलर को नरिश करने के लिए है। मेन तो पांच ही है ना, शान, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य अथवा श्रृंगार। क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि माधुर्य भाव, माधुर्य रस, वास्तव में माधुर्य और ऐश्वर्य दो होते हैं। ऐश्वर्य रस, ऐश्वर्य भाव होता है वैकुंठ इत्यादि लोकों में, और गोलोक में जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सब माधुर्य होती हैं, चाहे वो दास से भी हो, दास भी मधुर होता है, मधुर का मतलब थोड़ी ज्यादा मिठास। और ये जो पांचवा जिसको हम जनरली माधुर्य बोलते हैं उसका वास्तव में नाम है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार भाव। तो इन पांच प्रकार से सेवा होती है। जनरली कोई किसी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो सारी एक फीलिंग एक साथ कंटेन करता हो। कोई भी व्यक्ति सारी फीलिंग्स एक साथ किसी के लिए कंटेन नहीं कर सकता। कि मैं कृष्ण को अपना बच्चा भी समझता हूँ, कृष्ण को अपना प्रेमी भी समझता हूँ, कृष्ण को अपना दोस्त भी समझता हूँ, और मैं अपने आप को कृष्ण का दास भी समझता हूँ। और शांत में भी कई बार जब कृष्ण की ऐसी सेवा भी करता हूँ कि कृष्ण मुझे देखे, मैं कृष्ण को देखूं, बस हो गया। ऐसा होता नहीं है, हमारा किस यूनिक रिलेशनशिप होता है कृष्ण के साथ। और इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी हमारा किसी का संबंध होता है तो वो यूनिक होता है, एक ही रिलेशनशिप होता है। एक रिलेशनशिप गाढ़ होता है, बाकी सब हो सकते हैं। जैसे एक पत्नी होती है वो अपने पति के प्रति उसके लगभग सारे भाव होते हैं, वो माँ की तरह अपने पति की केयर भी करती है जैसे माँ करती है। इसलिए भागवतों में इत्यादि कई शास्त्रों में पत्नी को जाया बोला जाता है, जन्म देने वाली माँ, क्योंकि वो पति की केयर करती है माता की तरह ही। और श्रृंगार रस में तो सेवा करती है, और उसके अलावा हमेशा सेवा करती है, दास की तरह भी सेवा करती है, और एक अच्छी फ्रेंड भी होती है। ऑफ कोर्स शांत में नहीं कर सकती हूँ पर फिर भी इसमें एक रस जो है गाढ़तम होता है, बाकी सब इसमें उसको नरिश करने के लिए होते हैं। बेसिकली मेन रस क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, और बाकी उसको नरिश करने के लिए होते हैं। उनका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता स्थान बाकी सब रसों, सही बात है ना। परंतु ये नित्यानंद प्रभु अद्भुत पर्सनैलिटी है, हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, हर फीलिंग इनके अंदर है, हर फीलिंग। और जिस फीलिंग के साथ सेवा करते हैं उस फीलिंग में परफेक्शन के साथ करते हैं। जब दास की तरह करते हैं तो दास ही होते हैं 100%, कोई दास ऐसा नहीं हो सकता। तो हम चर्चा करेंगे इसको शास्त्रों में इनके बारे में जो वर्णन किया गया है। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है, क्या नाम है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है 9 प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, कई स्थानों पर लिखा है 12 प्रकार से करते हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं इसमें लिखा है 10 प्रकार से, और आप देखिए वो 10 प्रकार से कैसे सेवा कर रहे हैं। और ये जो 10 प्रकार की सेवा बताई जा रही है वो सेवा है शांत रस में। शांत रस में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कौन, बलराम जी अथवा नित्यानंद प्रभु। एक मिनट, हमारी सारी पुस्तकें जो हैं दिल्ली में अभी तक वापस लाए नहीं हम, तो इसलिए फोन से पढ़ना पड़ेगा।
दशमूर्ति धरि राम पूरे कृष्ण काम सुनहु ताहार विवरण पादुका वसन छत्र शय्यासन यज्ञ सूत्र मंदिर बाहिर विभूषण आर उपादान रूपे कृष्ण देन महासुखे एहि मत कृष्ण सेवा करे अनंतेर लीलायत केवा जाने अभिमत कृष्ण संगे सदाई विहारे। क्या लिखा इसमें? एक हम नाम जानते हैं शेष भगवान का, भगवान नित्यानंद का, बलराम जी का, एक नाम क्या है? शेष, अनंत शेष। अनंत शेष का एक अर्थ पता क्या है? जनरली हम सोचते हैं कि बहुत सारे फंड हैं इसलिए अनंत शेष, या उनका कोई पार नहीं पा सकता इसलिए अनंत शेष। तो आचार्य वर्णन करते हैं अनंत शेष का एक अर्थ यह है। शेष का मतलब क्या होता है? एक और भी मतलब होता है शेष का, बचा हुआ। तो बोलिए, कृष्ण लीला में कृष्ण को और जिनके साथ वो लीला करने जा रहे हैं, मतलब जो उनके संगी मानो श्रीमती राधा रानी हैं, गोपियां हैं, यशोदा माई हैं, गोप सखाएं कोई भी हैं, इन दोनों को छोड़ के, उनके संगियों को छोड़ के और कृष्ण को छोड़ के, अनंत जितनी भी चीजें शेष रह जाती हैं लीला का संपादन करने में, वो सब इनके द्वारा संपन्न की जाती है। क्या क्या रह जाता है, क्या क्या चाहिए होता है? स्थान मतलब धाम। तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु क्या है? धाम, श्री वृंदावन धाम की, नित्यानंद राम की। तो ये जो वृंदावन धाम है वो बलराम है, नित्यानंद राम है। हमने पहले दिन वो प्रभुपाद जी का पास टाइम भी सुना था, कोई भेद नहीं है। और औरों को तो छोड़ो, साक्षात श्रीमती राधा रानी बिना नित्यानंद प्रभु के सेवा नहीं करेगी कोई कृष्ण की। जब कृष्ण ने बोला कि मैं धरा धाम पे जाके लीला संपादन करना चाहता हूं, तो राधा रानी बोली जब तक वृंदावन नहीं होगा नहीं जाऊंगी मैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी राधा रानी की। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब वैष्णवी राधा रानी कुरुक्षेत्र जाती है तो प्रसन्न नहीं होती है। सोयम कृष्णा मिलित सहचरी कुरुक्षेत्रे मिलिता तथा हम राधा तदुदम उभय संगम सुखम। वही कृष्ण है यहां पर, स्वयं कृष्णा। देखो देखो, मैं उसी कृष्ण से मिल रही हूं। हे सहचरी, हे सखियों, देखो मेरे सामने वही कृष्ण है और मैं भी वही राधा हूं। तथा हम राधा तदिदम उभय संगम सुखम। और मिलने का कुछ सुख है यहां पे। तथा पियंत खेलेना मधुर मुरली पंचम जुषे। फिर भी मेरे मन में ना एक ही चीज का बार बार स्मरण आ रहा है, यहां पे वंशीवादन नहीं हो रहा, वंशीवादन नहीं हो रहा। और मना में कालिंदी तटया कदम अकेली सुप्रत है। परंतु बार बार मेरे मन में क्या है, वो यमुना जी के तट पे जो वृंदावन में कृष्ण के साथ मिलन है उसका स्मरण हो रहा है। यहाँ पे वही कृष्ण है, मैं वही राधा हूं, मुझे सुख नहीं मिल रहा। मुझे तो सुख तब मिलेगा जब कृष्ण भी होंगे, मैं भी होंगी, पर हम होंगे श्री वृंदावन धाम में। मतलब कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भी आपस में मिलने का सुख तक नहीं ले सकते जब तक श्री वृंदावन धाम ना हो। तो ये नरिशमेंट कौन दे रहा है? श्रीमन नित्यानंद प्रभु। वृंदावन धाम की। राधा रानी कहती है वहां पे कृष्ण को, यहां पे तो आप क्या हो, साथ में इतने सारे आपके संगीगण हैं। जहां राज वेश संगे सर्व क्षत्रिय गण तहां गोप वेश तुम्हें मुरली वदान। यहां क्या है? राज वेश में उतने सारे क्षत्रिय आपके साथ हैं। वो जगह याद आ रही है जहां पे आप गोप वेश में रहते हो, तुम्हें मुरली वदान, और हमेशा आपके बदन पे जो है मुरली विराजती है। तो श्रीमती राधा रानी, मतलब कि बिना वृंदावन धाम के कृष्ण तक आनंद नहीं ले सकते। और क्या चीज की आवश्यकता होती है? हाँ, वातावरण, वो तो धाम में सब आ गया। और वंशी, वंशी के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु बलराम जी ही वंशी का रूप धारण करते हैं और कोई नहीं है।
और क्या चाहिए? कपड़े पहनने की आवश्यकता है कृष्ण को? तो वो जो वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण, वो सब कौन है? बलराम जी हैं, श्रीमद नित्यानंद बलराम नित्यानंद जी हैं। और श्री कृष्ण अगर यज्ञ सूत्र धारण करते हैं, यज्ञ सूत्र समझ गए किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनेऊ। वो यज्ञ सूत्र भी नित्यानंद प्रभु हैं। जैसे एक बार जब हमें याद है, महाराज के चरणों की सेवा कर रहे थे, किसी ने महाराज को श्याम सुंदर जी का, श्याम सुंदर है ना कृष्ण बलराम में मंदिर में, श्याम सुंदर जी का वो ला के दिया थ्रेड। महाराज उसको पहले प्रणाम किए, दो तीन बार तो उसको प्रणाम किए, बार बार प्रणाम करके महाराज बोले ये तो स्वयं ठाकुर जी है। और फिर उसको फिर महाराज ने पहन लिया तो बोले स्वयं। एक बार महाराज के साथ परिक्रमा करते हुए जा रहे थे तो महाराज बोले, मैं उधर घास की तरफ जा रहा था, महाराज बोले ध्यान से पैर रखना, ये उद्धव जी है। सो ये जो मतलब इतने करुण है नित्यानंद प्रभु, सबसे पहले तो वो स्वयं सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, और फिर हमें भी आनंद दे रहे हैं। हम भी उनके ऊपर चरण रख के जाते हैं तो उनको कुछ दुख नहीं होता, उनको लगता है कृष्ण की सेवा के लिए आए। उनको दुख तब होता है कि कोई उनके ऊपर चरण भी रखे और कृष्ण सेवा के लिए ना जाए, पिकनिक मनाने के लिए जाए। और कृष्ण को इतना प्रिय है ये धाम कि कृष्ण वृंदारण्यम स्वपद रमणम, अपने चरणों से वृंदावन की भूमि को आनंद पहुंचाने की इच्छा रखते हैं श्री कृष्ण, इसीलिए चप्पल नहीं पहनते। और दूसरी तरफ से वो वृंदावन की भूमि जो है, क्योंकि स्वयं बलराम जी हैं नित्यानंद प्रभु हैं, उनके मन में इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा कंकर भी कृष्ण के चरणों में ना चुभ जाए, तो वो बटर के जैसी सॉफ्ट रहती है हमेशा। जहां पर कृष्ण एक बार पैर रख देते हैं तो वहां पर अगर गैया भी चली जाए, कुछ भी चली जाए, वो उनके चरण चिन्हों को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसीलिए वृंदावन की भूमि का एक नाम है कृष्ण चरण चिन्ह विभूषिता, जो कि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से विभूषित हो। और इसीलिए हम देखते हैं लगभग कृष्ण वृंदावन में लगभग 11 साल की उम्र तक रहे, यस, और इतने साल में केवल नंगे पैर चले, पर एक बार भी कोई कंकर उनको लगा हो कहीं वर्णन नहीं आता, इतना ध्यान। वस्त्र, जो वस्त्र वो धारण करते हैं वो है श्रीमद नित्यानंद प्रभु, जो थ्रेड वो धारण करते हैं वो है नित्यानंद प्रभु, जो मुकुट वो धारण करते हैं वो है श्रीमद नित्यानंद प्रभु। और जब वो कभी ब्रज से बाहर गए तो वहां पर उन्होंने चरण पादुकाएं पहनी, तो पादुकाएं हैं नित्यानंद प्रभु। हमेशा कृष्ण के चरणों पर रहना चाहते हैं, जब तक वृंदावन में थे तो वृंदावन भूमि वो स्वयं है, तो निरंतर चरण स्पर्श मिल रहा था। पर उन्होंने देखा ये तो बाहर जा रहे हैं, तो बाहर मेरे को कैसे चरण स्पर्श मिलेगा, तो उनकी चरण पादुकाएं बन गए नित्यानंद प्रभु, उनकी चरण पादुका। तो हमेशा कृष्ण का चरण स्पर्श चाहते हैं वो, एक क्षण भी कृष्ण के चरणों से दूर नहीं होना चाहते, इसलिए उनके चरण पादुका बन जाते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तो जब कोई स्पेशल पर्सनैलिटी चलती है तो उसके ऊपर छत्र लेके चला जाता है, छत्री, इसलिए जब भगवान चलते हैं हम छत्र लेके चलते हैं। और अब यहाँ पे श्रीमद नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, जिनके चरण कैसे हैं, नेताय पद का माला कोटि चंद्र सुशीतला, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से भी ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं भक्तों के हृदय को, जो सारे जगत को शीतलता प्रदान करने वाले श्रीमद नित्यानंद प्रभु हैं, आज वो श्री कृष्ण को भी शीतलता प्रदान करने के लिए छत्र बन जाते हैं उनका, छत्र बन जाते हैं उनका, पादुका वसन छत्र शय्यासन। और जिस पर कृष्ण सोते हैं, क्योंकि अब उनको तो हमेशा कृष्ण का चरण स्पर्श चाहिए ना, अब जब वो बेड पे चढ़ जाएंगे, वृंदावन की भूमि नीचे वो चढ़ गए बेड पे, पादुका भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, तब कैसे कृष्ण का चरण स्पर्श पाएंगे? तो वो शय्यासन भी खुद बन जाते हैं, शय्यासन मतलब कृष्ण का बेड, स्लीपिंग बेड, स्लीप वेल। स्वयं बलराम जी कितनी मतलब इतनी गाढ़ भावना सेवा की। और जिस घर में अगर जहां पे कोई मंदिर है, मंदिर में जैसे हमारे ठाकुर जी के मंदिर हैं, वो जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर स्वयं बलराम जी बन जाते हैं, भीतर बलराम जी रहते हैं, बाहर भी बलराम जी रहते हैं। और श्री कृष्ण जितने अलंकार धारण करते हैं, अलंकार समझते हैं ना, आभूषण, वो भी सब बलराम जी, कुंडल, माला, कड़े, बाजूबंद, और वो जो वैजयंती माला पहनते हैं श्री कृष्ण, वैजयंती माला जो है कृष्ण जब पहन के निकलते हैं तो आसपास जाते हुए भक्त लोग केवल उसकी सुगंधी, अभी तो कृष्ण की क्या होती है, उसकी सुगंधी से ही मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब कोई भक्त भक्ति में उन्नत होने लग जाता है, अब हम सबको पता लगेगा हम कितने उन्नत हैं, कह रहे जब वास्तव में कोई उन्नत होने लग जाता है तो उसकी धीरे धीरे स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं। अभी हमारी सेंस क्या है, जैसे सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ देख सकते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट है ना, टेस्ट बड्स, ये सब चीजें जो है हमारी, सेंस ऑफ टच, स्पर्श, तो अभी ये सब भौतिक हैं, पर जब हम भक्ति में उन्नति करते हैं तो ये धीरे धीरे जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञानेंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और एक एक करके जागृत होती हैं। और सबसे पहले हमारी जो पहली जो आध्यात्मिक ज्ञानेंद्रिय जागृत होती है वो होते हैं कान। हमारे को कृष्ण की वेणुनाद सुनाई देता है, मधुर मुरली वो सुनाई देती है। और जब सबसे पहली सेंस जब किसी भक्त की एक्टिवेट हो जाती है ना, सबसे पहली इंद्रिय किसी भक्त की एक्टिवेट हो जाती है, संसार के लोग उसको पागल समझने लग जाते हैं, क्योंकि वो बैठे बैठे इधर उधर देखना शुरू कर देता है, बाहर जाता है घर के बाहर जाके ढूंढ के आता है, कभी अंदर जाता है उसको समझ नहीं आता, रोने लग जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कहाँ से आ रही है ये आवाज, उसको आवाज आती है वो वेणु की, जब उससे वो इतना पागल हो जाता है, इतना मद हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता आवाज कहाँ से आ रही है, इससे पीड़ित होता है वो। और फिर उसको इस आवाज के साथ साथ कई कई बार कृष्ण के हंसने की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी उनको कृष्ण बातें करते हुए सुनाई देते हैं किसी से। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं भजन में कि नरोत्तम दास को है नित्य लीला सुखमय सदा हस सुख मोर मन, कैसी लीला, जब वो देखते हैं श्याम संगे सुंदरी राकी का, जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं और क्या करते हैं, हास परिहास संभाषाने, हास परिहास, तो उसको ये सब सुनाई देता है कभी कभी, और कभी तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं, आवाज सुनाई देती है उसको कि मैं हूँ ये, मैं बजा रहा था मुरली, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो ये सुन सुन के ना अब वो संसार के दृष्टिकोण से वो क्या हो जाता है, पागल, पागल संप्रदाय में आ जाता है, पागल खाना इस्कॉन। और फिर उसकी धीरे धीरे कौन सी सेंस एक्टिवेट होती है, सेंस ऑफ स्मेल, अब उसको ना वैजयंती माला की सुगंध आती है तो वो मूर्छित हो जाता है, इतनी सुंदर सुगंध, कभी कृष्ण के शरीर की सुगंध आती है, और जब वो सुगंध आती है ना तो वो जहां बैठा होता है ना कई बार अपने बेड के नीचे देखता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कहां से खुशबू आ रही है, सब जगह जाके देखता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा एक माता जी को बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी कहीं से मंदिर में किसी, तो वो जो भी भक्त आता था, मतलब जो जेंट्स थे नहीं, जो लेडीज थी, लेडीज को सुनती थी तुम्हारे में से नहीं आ रही, तुम्हारे से नहीं आ रही, तो ये भक्त ऐसे ही हो जाता है, पर ये सुपर पागल हो जाता है, कह रहे कहाँ से आ रही है स्मेल, वो कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है, और ना ऐसी स्थिति हो जाती है उसको जब समझ में नहीं आता तो जोर जोर से हंसने लगता है कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, हंसता है जोर जोर से, जोर जोर से हंसता है, और हंसते हंसते अचानक रोना शुरू कर देता है, तो लोग सोचते हैं पागल हो गया है। और फिर तो एक दिन क्या होता है, उसकी सेंस ऑफ विजन जो उसकी दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है, उसको कभी कभी कृष्ण नजर आते हैं, और इसको बोलते हैं लीला स्फूर्ति, इसको बोलते हैं लीला स्फूर्ति। और जब वो दृष्टि से देखता है उसको कृष्ण नजर आते हैं, पागल हो जाता है वो, अब वो एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, मरणासन हो जाता है उसका शरीर, एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, इतना गाढ़ उसके हृदय में उस समय विरह जागृत हो जाता है कि अब कृष्ण एक क्षण के लिए भी मुझसे ओझल ना हो, परंतु हो जाते हैं। एक बार श्रीमद् राधा गोविंद महाराज कहीं से कोट कर रहे थे कि ऐसे भक्त की स्थिति क्या होती है, उसके जीवन में सुख रह ही नहीं जाता, उसकी क्या स्थिति होती है,
न दर्शने न दर्शनोत कंठा दर्शने न विच्छेद भीरुता न दर्शने न च दर्शने न भवत विद्यते सुखम। उसकी स्थिति क्या होती है बेचारे भक्त की, जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते तो वो उतावला हो जाता है, पागल हो जाता है। दर्शने न उत्कंठा, उसके हृदय में दर्शन की उत्कंठा जागृत होती है, गाढ़ उत्कंठा। वो उस उत्कंठा में पागल हो जाता है कि क्यों मुझ पे कुछ कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे। और ऐसे भक्त को जैसे ही कृष्ण के दर्शन होते हैं वो फिर दुख में चला जाता है, फिर उसको कष्ट शुरू हो जाता है कि विच्छेद भीरुता, इस भय से कि अब कृष्ण चले ना जाए, कहीं वापस मेरी नजरों से उछल ना हो जाए। इसलिए ऐसे भक्त की स्थिति में क्या होती है स्थिति उसकी, ना दर्शने ना च दर्शने न भवत विद्यते सुखम। उसके जीवन में ना तो दर्शन करके ना हाँ बिना दर्शन के उसके जीवन में सुख रह ही नहीं जाता। बहुत मुश्किल है इसको समझना, बहुत मुश्किल। इसीलिए शिला रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम का जो हरे कृष्ण, ये जो प्रेम है इसको समझना मुश्किल है क्योंकि बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है चीज, बहुत टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है ये प्रेम, इसको कोई समझ नहीं सकता। अहरिया गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे, अहरिया, अरे सुनो सुनो, ये जो प्रेम की गति है ना स्वभाव से कुटिल है। कुटिल समझते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, जिसको कोई समझ ना सके। तो ऐसी स्थिति होने लगती है और फिर एक दिन क्या होता है कि वो अब वो कृष्ण को स्पर्श करना चाहता है, वो कृष्ण के पास जाना चाहता है, पर कृष्ण तो अभी उसकी दृष्टि में ही आए हैं, उसका सेंस ऑफ टच अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। और फिर एक दिन उसको कृष्ण का स्पर्श मिलता है, तो ये पांच बाण लगते हैं उसको, तो पंच बाण आया, कृष्ण का एक नाम है पंच बाण। हम सब भी पांच बाणों से ही प्रभावित होते हैं संसार में, पर वो किसके होते हैं, हाँ, कामदेव के, कामदेव के पांच बाण हैं, पंच बाण, कामदेव, क्यूपिड। पहले क्या होता है कि उसको आवाज सुनाई देती है पुरुष को, स्त्री की, स्त्री को पुरुष की आवाज सुनाई देती है। इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्मचारियों को, हम तो है नहीं गड़बड़ है, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको स्त्रियों को सुनना भी नहीं चाहिए गाते हुए भी। तो जब आवाज कान में जाती है तो फिर उसके प्रति आकर्षण जागृत होता है, फिर स्मेल आती है जो परफ्यूम लगी होती है, तो आहा, और फिर क्या होता है दृष्टि पड़ती है और फिर स्पर्श, आगे तो फिर पूरी स्टोरी होती है। तो जितने भी जीव इस भौतिक संसार में एग्जिस्ट करते हैं ये कामदेव के इन पांच बाणों से प्रभावित रहते हैं, एक एक करके एक एक बाण लगता है, और कुछ लोग तो एक दो बाणों में ही फ्लैट हो जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण भी बाण छोड़ते हैं, उनके भी पांच बाण हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है, वो भी कामदेव है। वृंदावने अप्रकट नवीनमदाना काम बीज काम गायत्री अरब उपासना, वृंदावन में अप्राकृत, अप्राकृत समझते हो, नॉट वर्डली, ट्रांसेंडेंटल, हाँ क्या बोलने वाले, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड द थ्री गुणस, एक ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड एग्जिस्ट करते हैं वृंदावन में। और वो कैसे है, नवीन, हर दिन नए रहते हैं, हर दिन नए रहते हैं, तो वो भी कामदेव हैं। और वो क्या करते हैं, नवा पुष्प बाण आया, और वो अपने पुष्प बाणों को छोड़ते हैं। और वो पुष्प बाण कैसे होते हैं, पहले उनकी आवाज आती है, फिर उनकी स्मेल आती है, फिर उनके दर्शन होते हैं, फिर उनके स्पर्श होता है, इस प्रकार से। सो श्री कृष्ण, तो अगर अगर किसी को काम से ही प्रभावित होना है तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी तो काम देव हो, क्यों इस संसार के काम देव मुझे परेशान कर रहे हैं। जैसे महाराज कुलशेखर कहते हैं, मनसा परिहर मदना मदीय, मदना परिहर मनसा मदीय, हे मदन छोड़ दो मेरे मन को, मनसा मुकुंद पदार विंद धामनी, क्योंकि अब मेरा जो मन है तुम्हारे रहने के लायक जगह नहीं है, अब ये तो मुकुंद के चरणों का स्थान बन चुका है, यहाँ पे अब तो मुकुंद के चरण विराजेंगे, तुम क्या कर रहे हो, भागो यहां से। भूल गए कि तुम्हारे को शिव जी ने जला के भस्म कर दिया था, आज तुम्हारे को भय नहीं हो रहा श्री कृष्ण के चक्र से, भागो यहां से। तो हमारे को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान बोल रहे हैं इसमें कि श्री कृष्ण कपिल देव जी के रूप में बता रहे हैं श्रीमद भागवतम तृतीय स्कंद में, हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्रम शोकाशु सागरम विशोषणम अति उदारम सम्मोहनया रचयितुम निज माययस्य भूमंडला मुनि कृता मकर ध्वजस्य। हसम हरे रवनता अखिल लोक तीव्रम, कृष्ण अपनी हंसी से ही तीनों लोकों के जो शोक और अश्रु के सागर है उनको सुखा देते हैं। जीव गोस्वामी बोले कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, सुखा कैसे सकते हैं, कृष्ण का मुख तो चंद्र के समान है, चंद्रमा तो समुद्र को बढ़ा देता है, सुखा कैसे सकते हैं। तो वो बोलते हैं इसका उत्तर यह है कि वो शोक और अश्रुओं के सागर को डुबो सुखा करके निमज्जंती आनंद सागर, आनंद के सागर में डुबो देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, सम्मोहनया रचयितम निज माययस्य भूमंडलामुनिकृतम अकिरदजस्य। जब कृष्ण देखते हैं कि उनके भक्त कामदेव से प्रभावित हो रहे हैं और वो कृष्ण के चरणों में आते हैं कि प्रभु मैं कामदेव से नहीं प्रभावित होना चाहता, मैं तो आपके चरणों से प्रभावित होना चाहता हूँ, परंतु कामदेव मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रहे हैं, कुछ करो ना। तो कृष्ण क्या करते हैं, सम्मोहनया, पहले तो उनको क्रोध आता है और क्रोधित होकर के अपनी सम्मोहन शक्ति से, अपनी शक्ति से, निज माययस्य अपने अंतरंगा शक्ति से भूमंडलों को प्रकट करते हैं, भूमंडल मतलब अपनी भोहों को। और इससे क्या करते हैं, सम्मोहनया मुनि कृतम मकर ध्वजस्य, वो जो कामदेव उनको भक्तों को कष्ट पहुंचा रहा था उसको सम्मोहित करके गिरा देते हैं। तो इसीलिए भागवतम अनुमोदन करती है कि जब हमारा मन स्थिर ना हो तो श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान दें, जब कामदेव से प्रभावित हो तो उनकी भोहों पर ध्यान दें और वो भाग जाएंगे। तो खैर हम डिविएट हो गए अपने टॉपिक से, पॉजिटिव डिविएशन। तो श्री नित्यानंद प्रभु क्या बन जाते हैं, उनकी शैया बन जाते हैं, विभूषण बन जाते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण को सुख देने के लिए कई कई आइटम वो बन जाते हैं, जितनी भी चीजें कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक हो वो सब बन जाते हैं। कृष्ण की वेदी, कृष्ण का ऑल्टर वही होता है। जब मंदिर में भगवान का श्रृंगार करने के लिए हम ऊपर चढ़ते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए, तो ऑल्टर के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है ना, ठाकुर जी ऊपर होते हैं, काफी बड़ा ऑल्टर होता है, तो सबसे पहले उसको साफ किया जाता है, साफ करके चारों तरफ उसके ऊपर चादर बिछाते हैं, ऑल्टर पे पैर नहीं रखते पुजारी, उसके ऊपर चादर बिछाते हैं। चादर बिछाने से के बाद उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत नहीं कर सकते वहाँ पे हम, अलाउड नहीं होता ऑल्टर के अंदर दंडवत करना। तो ऑल्टर पे जाते हैं, ऑल्टर को प्रणाम करते हैं, ऑल्टर पे सिर लगाते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमसे अपराध होंगे, हम आपके ऊपर चरण रखने जा रहे हैं, और फिर उसके ऊपर चरण रखते हैं और जाके कृष्ण की सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद फिर से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कर देना, क्योंकि सेवा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, पर चढ़ना तो पड़ेगा ही ऑल्टर पे। और वो ऑल्टर क्या है, स्वयं बलराम जी श्रीमद नित्यानंद प्रभु हैं। तो हर प्रकार से, मतलब कि जब भी हम कृष्ण को दर्शन करें तो हमें कभी ऐसा क्षण आता ही नहीं है जब कृष्ण श्रीमद नित्यानंद प्रभु से अलग हो, नित्यानंद प्रभु वहां पे विराजे ही होंगे हर कंडीशन में। तो जैसे हम देखते हैं कृष्ण को और गौर हरि को, तो तुरंत हमारे को दो पर्सनैलिटी एक साथ दिखनी चाहिए, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौरा चंद्रा, ये दोनों एक साथ दिखने चाहिए। जब बलराम कृष्ण खड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से जो वस्त्र दिख रहे हैं, जो मुकुट दिख रहा है, जो पादुकाएं दिख रही हैं, जो जनेऊ दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, इवन जो उनके चेहरे पे पेंट हुआ पड़ा है, और कृष्ण की सेवा में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जैसे मृदंग है, मृदंग कृष्ण की सेवा के लिए, तो ये क्या है, बलराम जी नित्यानंद प्रभु, इसलिए इनका आदर सम्मान करना चाहिए, करताल हैं। और वैसे तो हारमोनियम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, पर जब ये ठाकुर जी की सेवा में यूज हो रहा है तो मतलब नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी हैं।
तो जो भी चीज एग्जिस्ट करती है संसार के अंदर जिससे कृष्ण की सेवा हो सके वो सब नित्यानंद प्रभु। इसलिए जैसे ही कृष्ण दिखेंगे साथ में नित्यानंद प्रभु। अब वही नित्यानंद प्रभु कृष्ण की दास्य रस में भी सेवा करते हैं। दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं? बाहे दे यही खेला दास्य साके भाले दिलाई सब नित्य पर काटान। तो अब ये नित्यानंद प्रभु हर समय सबसे पहले हम देखते हैं विष्णु जी के पास किस रूप में रहते हैं? शेषनाग के रूप में, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर। जब श्री कृष्ण के साथ होते हैं तो वो कई बार कृष्ण के पास समर्पण करते हैं। बलराम जी श्री कृष्ण का पाद समर्पण करते हैं। जहाँ पे भी श्री कृष्ण कोई लीला करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनके दासत्व के रूप में उनके लिए जो भी अरेंजमेंट्स करनी होती है तो उसके लिए खुद नित्यानंद प्रभु जाते हैं। पहले जब श्री कृष्ण जन्म लेना चाहते थे इस संसार में तो पहले कौन आए? किस लिए? कि वो गर्भ में अगर कुछ कंटेमिनेशन अभी भी रह गया हो तो मेरे शाम वहाँ पे आने वाले हैं तो वहाँ सफाई कर दी जाए। जहाँ पे हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं वहाँ पे कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण को गंदा स्थान पसंद नहीं है। अगर हमारे हृदय में गंदगी है तो कृष्ण उस हृदय में नहीं आएंगे। इस हृदय को साफ करना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम। अगर हमारे हृदय में किसी भक्त के प्रति, अरे भक्त के प्रति तो छोड़ो, किसी साधारण मनुष्य के प्रति भी ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, वो कृष्ण कहेंगे तू यही कर ले, कृष्ण नहीं आएंगे उस हृदय में। सफाई करने के लिए आते हैं बलराम जी। इसलिए भक्त लोग नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं कि आप ही आए थे गर्भ का मार्जन करने के लिए, हमारे हृदय का भी आप ही कीजिए, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। नित्यानंद प्रभु का आह्वान कर सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु आप कृपा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय का मार्जन कीजिए और मेरे हृदय में कोई भी भौतिक कामना ना रहे, किसी भक्त के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष ना रहे, किसी संसार में वैष्णव के प्रति, संसार के व्यक्ति के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष ना रहे। तभी तो हमारे हृदय में हरि नाम प्रकट होंगे, तभी तो हरि नाम हमसे सेवा स्वीकार करेंगे। अगर हृदय में ये सब रहेगा तो हरि नाम नहीं आएंगे। केवल नाम अक्षर का ही हम उच्चारण करते रह जाएंगे, परंतु नाम अक्षर नाम नहीं। नित्यानंद प्रभु वो सफाई की सेवा भी करते हैं, पर फिर भी नित्यानंद प्रभु कुछ रेसिप्रिकेशन हमारी तरफ से भी चाहते हैं। हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु हैं, जगाई मधाई तक को माफ कर दिया उन्होंने, वो माफ कर देते हैं। तो वो ऐसी भावना हमारे से भी एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे अंदर भी थोड़ी फॉरगिवनेस हो। अगर किसी से हमारे प्रति कुछ हो भी गई है गलती, एटलीस्ट माफ करना सीखें हम। नित्यानंद प्रभु से हम ये आशा करते हैं कि वो हमारे सारे पापों को माफ कर दे, पर हम किसी की एक छोटी सी भी गलती माफ नहीं करेंगे। क्या रेसिप्रिकेशन जेन्युइन है? जब रेसिप्रिकेशन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से होता है। जब वो देखते हैं कि हम उनके भक्तों में गलतियां देखकर भी उनको क्षमा करने को तैयार है, उनको आदर सम्मान करने को तैयार है। अगर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर कोई सुपीरियर है, कोई सीनियर है हमसे और उनकी गलत इंस्ट्रक्शन है, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सुपीरियर कैनॉट बी फॉलो, शुड नॉट बी फॉलो, नहीं करनी चाहिए। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि उनका हम अपमान करना शुरू कर दें, उनकी निंदा शुरू कर दें। गिलास में डाल दो, गर्म है। तो उनके हम किसी भी प्रकार से निंदा करें, उनका सम्मान तो कर सकते हैं, इतनी फॉरगिवनेस तो रख सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से तो लगे ही हुए हैं, चाहे उनमें कोई भी कमी हो। जब गोपाल नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, अगर किसी भक्त से कुछ गलती हो भी जाती थी और कोई भक्त उनको बताता था इस भक्त ने ये गलती करी है, कोई निंदा करता भी था, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते थे क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली सेवा में लगा हुआ किसी ना किसी प्रकार से ठाकुर जी की। तो इस प्रकार से जब तक हम उस भावना को कल्टीवेट करना पड़ेगा, एक तरफ से इसमें ले लेते कोई, एक तरफ से तो यह है कि हम चाहते हैं वो हमें क्षमा कर दें, पर अगर हम क्षमा ना करें, पर हमारे अंदर कमी है, हम कर नहीं सकते, इसलिए हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे कृपा कीजिए, कबे हवे बोले शेर नाम अपराध गुची शुद्ध नाम रची कृपा बने हुए हृदय संचार। कब आएगा वो दिन मेरा कि मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम हमारे को फोर्सफुल प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। हमारे को नित्यानंद प्रभु को ये दिखाना तो पड़ेगा कि वी आर सीरियस। वो सारा काम करने को तैयार है पर अपनी सीरियसनेस तो शो करनी पड़ेगी। हृदय से नहीं कर पा रहे कम से कम बाहर से तो हम सावधान रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हृदय से भी ये जाएं। जब हेडपम्प में पानी नहीं निकलता था तो ऊपर से पानी डालना पड़ता है फिर निकल के आता है तो कुछ हमें ऊपर से डालना पड़ेगा। तो इन एफर्ट्स को नित्यानंद प्रभु देखना चाहते हैं। वो सब कुछ माफ़ करने को तैयार हैं हमें भी तो तैयार होना चाहिए। तो हम उनसे बार बार प्रार्थना करें और साथ साथ प्रयास करें ये देखना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु आके हमारे हृदय का मार्जन करेंगे और वहाँ पे श्री गौर चरणारविंद विराजेंगे जब श्रीमद नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। नित्याई बोले गौर पावे नित्याई बोलेंगे तो गौरांग महाप्रभु मिलेंगे। ये भी एक दास्य सेवा उनकी भक्तों के हृदय की सफाई करना। स्वीपर बन के सेवा करते हैं वो जो हम सुनते हैं ना श्रुत्वा स्वकथा क्या है क्षणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतस्तो हि अभद्राणी विद्नोति सुहित सता। वो कृष्ण जो है क्योंकि देर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन नित्यानंदा एंड गौरा बलराम एंड कृष्ण। तो वो जो कृष्ण है परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए वो बलराम जी ये सेवा निभाते हैं। स्वीपर बन जाते हैं कृष्ण की सेवा के लिए कि यहाँ पे कृष्ण का पदार्पण होने वाला है। ये भक्त हरि नाम लेना चाहता है सेवा करते हैं। और जब हम इधर देखें लक्ष्मण जी के रूप में जब आए तब तो उन्हें दासत्व की सीमा दिखाई। उन्होंने दासत्व की सीमा समझते हैं ना लिमिट। इससे ज्यादा कोई दिखा नहीं सकता इससे ज्यादा कोई दास हो नहीं सकता। वनवास राम जी को मिला था लक्ष्मण जी को नहीं मिला था। और महलों में रहने वाला व्यक्ति साधारण घर में रहने वाला व्यक्ति भी जंगलों में नहीं रह सकता जाके। और महलों में रहने वाले के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतने लाड प्यार से पले बड़े थे लोग पर ये तैयार हो गए जाने के लिए तुरंत कि मैं भी राम जी के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। राम जी ने जब पादुकाएं राम जी देखे वो नंगे पांव हैं तो लक्ष्मण जी अपने चरण पादुकाएं तुरंत उतार देते कि जब राम जी ने नहीं पहनी हुई तो मैं कैसे पहनूंगा। राम जी जहां सोएंगे उसके नीचे जाके सोते थे। अगर राम जी जमीन पर सो रहे हैं तो लक्ष्मण जी जमीन पर नहीं सोते थे खोद के जमीन में नीचे करके सोते थे कि मैं राम जी के लेवल पे हूं ही नहीं। दासत्व की मतलब सीमा है ये। कोई दास ऐसा नहीं करेगा। हम तो अपने गुरु जी के साथ भी बैठ जाते हैं कई बार चेयर पे वो कहते हैं नहीं नहीं बैठ जाओ बैठो बैठ भी जाते हम पर लक्ष्मण जी इम्पॉसिबल। और लक्ष्मण जी जितने साल राम जी वनवास पे रहे 14 साल तक सोए भी नहीं पलक नहीं झपकने दी उन्होंने अपनी राम जी की सेवा में। दासत्व की सीमा है। एक बार एक मुझे याद नहीं आ रहा राधा रमन महाराज जी थे या कौन थे वो मंदिर में एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब हमारे को जप करते समय या ठाकुर जी की सेवा करते समय नींद आए तो हमारे को लक्ष्मण जी का से प्रार्थना करनी चाहिए। आप तो 14 साल बिना सोए रह गए थे हमें 14 घंटे भी मुश्किल हो जाता है तो उनसे हम प्रार्थना करें कि भैया जप कर लें इतनी देर तो शक्ति दे दो हमें। तो दासत्व की सीमा दास भाव में सेवा करते हैं। कई कई बार क्या होता था कि कृष्ण जबकि उनके छोटे भाई हैं परंतु वो उनकी संभारण करते थे चरणों का संभारण करते थे और उनके लिए सामान इकट्ठा करके लाते थे हमेशा उनकी सेवा में रहते क्योंकि लक्ष्मण जी के रूप में उन्होंने सोच लिया था कि भैया आज के बाद मुझे छोटा भाई नहीं बनना जो मन में आता करते हैं और कोई ठीक से सेवा भी नहीं हो पाती इनकी अपने हिसाब से सेवा करवाऊंगा मैं इनकी इनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने दूंगा। बलराम जी बन गए बलराम जी के रूप में कई सेवाएं करते थे तब इनकी एंजाइटी ये थी बड़ा भाई होने की वजह से सेवा नहीं देते तो हमेशा चिंतित रहते हैं कैसे मैं बेस्ट सेवा कर सकूं। अब यही नित्यानंद प्रभु और यही बलराम जी कैसे सेवा करते हैं साखे रस में यहां देखिए लिखा है इसमें, कुमारे बाले रस होइला माता पिता वश, बाले रस भुंजे न पार, बाले दुहे होइया मत एक भाव एक तत्व, एक सन शैया भोजन, एक कार्य दुहे चले दुहे एक खेला खेले, दुहे तोषे पिता माता मान। क्या कहते हैं ये, बाले दुहे होय मत, बाल्यकाल में जब एक साथ रहते थे आपस में इतने मत रहते थे, इनको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता था, आपस में ही खुश रहते थे, ऐसा गाढ़ साख्य, साख्य की भी सीमा है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जब घर में दो भाई एक साथ होते हैं, दो बहनें होती हैं या भाई बहन होते हैं, तो उनकी हम प्रेम के आस्वादन करते रहते हैं, देखते हैं सब घर में तूने ऐसा क्यों किया, नहीं दूंगी तेरे को, ये बजाता वो उसको बजाता, झगड़ा होता रहता है। परंतु यहां पे थोड़ा बहुत मजाक चलता था कि उसने मेरे को काला बोला, उसने मेरे को बोला तेरी माँ यशोदा नहीं है, बस इससे ज्यादा नहीं। और असलियत में इनकी क्या स्थिति रहती थी, बाले दोहे होए माता, एक दूसरे में ही रमे रहते थे, एक ही दूसरे में आनंद रहते थे, एक भाव एक तत्व, एक ही भाव रहता था। अगर चोरी करनी है तो दूसरे के मन में भी यही भाव है चोरी करनी है, सेम। नित्यानंद प्रभु भी यही करते थे, जब जाते थे, हरिदास ठाकुर की ये भी एक परेशानी थी, जाते थे जब लोगों के घरों पे, तो अगर किसी के घर पे उनको मक्खन या कहीं पे सामान रखा हुआ दिखता था तो उसको प्रचार करने के बजाय मक्खन खा के भाग जाते थे। और हरिदास ठाकुर बेचारे बूढ़े थे, उनसे उम्र ज्यादा थी, वो फंस जाते थे, बोले भैया मैंने नहीं खाया, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, वो खा के भाग गया। एक भाव एक तत्व, तत्व तो एक ही है, और साथ में एक आसन शैया भोजन है, और तो स्वयं तो शैया है ही है, स्वयं तो आसन है ही है, पर अब साख्य रस का आस्वादन क्या कर, कैसे करते हैं, ये एक ही आसन पे एक साथ बैठते हैं, घुस घुस के बैठ जाते हैं एक ही आसन पे, जैसे क्या नाम है, जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका आपस में बड़ा प्रेम का संबंध है, विशेष प्रेम का संबंध है। तो एक बार मुंबई में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा हो रही थी, तो श्रीधर महाराज आए, श्रीधर महाराज को जानते हैं हम लोग, जोली स्वामी के नाम से फेमस थे वो, श्रीधर महाराज। श्रीधर महाराज आए, वो हंसते हंसते आए, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो व्यास आसन पे जहां बैठे थे दोनों उनके साथ ही घुस के बैठ गए, बोले मेरी भी पूजा करो। प्रेम आपस का। इधर भी क्या नाम है, हम कई बार देखते हैं, जैसे जब शिला जयपताका स्वामी महाराज आते हैं तो उनका प्रेम का देखते हैं कैसे, एक ही साथ घुस जाते हैं एक ही जगह पे। अब तो महाराज का हेल्थ थोड़ा डाउन हो गया जब, तो इसलिए महाराज अपनी अलग चेयर पे रहते हैं, पहले महाराज एक पे भी बैठने को तैयार रहते थे, जबकि इतना बड़ा शरीर है महाराज का। तो प्रेम का आस्वादन। एक माता जी है, मैं उनका नाम भूल गया, प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, तो उनको हमारे मंदिर में एक माता जी से बड़ा प्रेम हो गया कि कितनी अच्छी डिवोटी है ये, और उनकी सारी सेवाएं कर रही थी। जब वो व्यास आसन पर लेक्चर दे रही थी तो उनको बोली कि तुम मेरे लेक्चर को ट्रांसलेट करो। हाँ, किशोरी माता जी, यस, प्रभुपाद जी की डिसाइपल है किशोरी माता जी। तो वो व्यास आसन पर बैठी, तो उनको बड़ा प्रेम हो गया था इस माता जी से। तो जब मैं ट्रांसलेट करने लगा तो माता जी बोलती है, नहीं आज तुम रोज ट्रांसलेट करते हो, आज वो मेरी फ्रेंड ट्रांसलेट करेगी। ठीक है, उनको दे दो। उनको मैंने माइक दिया, वो कह रही हाँ बैठ के ट्रांसलेट नहीं करेगी, व्यास आसन पे बिठा लिया अपने साथ ही। प्रेम है, साख्य भाव है। तो यहाँ पे बलराम जी और ये नित्य कृष्णा एक ही आसन पे बैठ जाते हैं, सोते भी एक साथ ही थे, एक ही बेड पे, एक ही आसन, एक शैया एक आसन, गाढ़ साख्य है। और भोजन करते थे एक ही बर्तन में, ऐसा नहीं कि तू तेरा अलग प्लेट मेरी अलग प्लेट, दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे मिलके। और तो और जब कितने लोगों ने वो देखी है भोजन थाली, ब्रजमंडल परिक्रमा, ब्रजमंडल में देखा एक जगह पे चट्टान है उसके ऊपर भोजन थाली बनी हुई है, कटोरियां बनी हुई है, भगवान ने पत्थर के ऊपर ही रख के भोजन किया था, गया तो वहां भी सब एक ही साथ एक ही पत्थर पे बैठ के खा रहे, प्रेम का आस्वादन है। ललित चलन गति ललित वचन, ललित चाहनी अंग भंगी, ललित कोमल तनु बाल चंद्र बाल भानु नव नव शिशु गण संगी। कितना स्वीट है ललित का मतलब, बहुत आकर्षक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, हृदय को आकर्षित करने वाली ललित। ललित का अब लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल ही नहीं है, ललित का मतलब ललित ही होता है। ललित चलन गति, जब वो चलते हैं तो वो हृदय को आकर्षित करती है, दम जब एक साथ होते हैं दोनों। ललित चलन गति ललित वचन गति, और जब वो आपस में बातें करते हैं तो माता पिता के मन को तो हर ही लेते हैं वो, जब वो आपस में प्रेम से बातें कर रहे होते हैं। जो लोग उनको बातें करते हुए सुनते हैं वो अपने सारी काम छोड़ के इन दोनों भाइयों की बातें सुनते हैं, और कोई बातों में बड़ी स्पेशल बात नहीं हो रही होती है, वो उन बातों को सुनते हैं। वो बोलता है बिल्कुल इमेजिनरी डिस्कशंस होती हैं। और क्या क्या करते हैं ये लोग, जाते हैं कुएं पे, गांव के लोग होते हैं अब शब्द जल्दी सीख जाते हैं बच्चे माँ बाप को देख के तो कुएं पे जाते हैं, जोर से एक आदमी का नाम लेके साथ में कोई एक बढ़िया सा अपशब्द बोलते हैं। तो जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज बोले तो बोलते कि वहां जाके बोलते अबे साले तो पर वो और भी बोलते थे तो उस कुआं में से इको होती है, वहां वाह वही वाली गाली जो उन्होंने दिया वो दोबारा रिपीट होती है, और तो सारे बच्चे वहां पे खड़े होकर ताली बजाते हैं कि देखो वही आवाज दोबारा आई हमारी, और एकदम प्रेम रस में आस्वादन करते हैं वो। उनकी बातों को सुन सुन के लोग रसों का आस्वादन करते हैं। ललित चलन भंगी, ललित कोमल तनु बाल चंद्र बाले भंग, और उनका जो तन है दोनों का एक ही जैसा है, सेम सॉफ्टनेस है, सेम कामनेस है। और साथ ही साथ जब वो देखने में आते हैं तो एक थोड़े शामन है, एक थोड़े उज्ज्वल है, परंतु दूर से देखने में क्या लगता है कि एक क्या नाम है बाल्य चंद्र बाल्य भानु, समझिए बाल्य चंद्र बाल्य भानु, भानु मतलब सूर्य, चंद्र मतलब चंद्र, दोनों दोनों का बचपन बचपन, समझ गए, बाल्य चंद्र बाल्य भानु। दोहे एक बलवान मूर्ति भेद येनो काम, श्वेत श्यामल दुई तानु, एक पुष्ट पिता मोरे बाल्य रसे सदा भोरे, एक प्राण बल भद्र कानु। कानु मतलब कृष्णा। ललित अभी क्या बोले, दोहे एक बलवान, दोनों में शक्ति भी बराबर है, ऐसा नहीं कि एक कम बलवान है दूसरा ज्यादा बलवान है, दोनों का बल समान है। मूर्ति भेद ये नो काम, बल्कि वास्तव में ये मान लो कि दोनों ही काम देव हैं पर अलग अलग मूर्ति हैं, दोनों ही काम देव हैं, सबों के मनों को हर लेने की शक्ति रखते हैं। भेद क्या है दोनों की मूर्ति में, श्वेत श्यामल दुई तनु, एक श्वेत है और एक श्यामल, बस यही भेद है। और इसीलिए मेरे तो ये दोनों ही प्राण है, भक्त बोल रहे हैं मेरे तो ये दोनों ही प्राण है, बलभद्र कानू, बलभद्र कानू, बलभद्र जी और कानू, ये दोनों मेरे प्राण हैं। तो ये सारी जो बातें बोली हैं हम इसका बंगाली ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, बट ओरिजिनली ये हरिवंश में सब अवेलेबल है, हरिवंश पुराण में, और श्री वैशंपायन जी के मुख से बोला हुआ है। अब ये जो साख्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशंस भी होती हैं, एक दूसरे को कमियां भी बताते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। जब द्वारका में चले गए तो वहाँ पे डिस्कशन भी होती हैं, और हमेशा क्या होता था कि जब बलभद्र की कोई इच्छा नहीं है कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही कृष्ण बोलने लगते थे तो बलराम जी बोलते थे कुछ मत बोलना तुम, मैंने बता दिया कि सुभद्रा की शादी अर्जुन से नहीं होगी तो नहीं होगी। वो कृष्ण को कहते एक बार बोलने तो, कृष्ण बोले एक बार बोलने तो, बोले तुम बोलना ही मत, बोले क्यों ना बोलू, कह तुम बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा इसलिए तुम बोलो ही मत। तो इनका गाढ़ साख्य, अब ना केवल इनके अंदर गाढ़ साख्य है, वात्सल्य भी उसी भावना का धारण करके रखते हैं, कृष्ण की बड़ी चिंता करते हैं। बड़े भाई होने के नाते वात्सल्य का मतलब क्या होता है ना, अपना बच्चा समझना, तो कृष्ण को बच्चा भी समझते हैं। जब यशोदा माई देखती है कि ये दोनों जा रहे हैं तो बलराम को कहती है कि इसका हाथ पकड़ के रहना और इसका ध्यान रखना, ये तुम्हारा छोटा भाई है। अब वो कहते हैं हाँ मैं इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगा, इसको थप्पड़ मारूंगा नहीं जाएगा। फिर यशोदा माई खुश होती है कि ध्यान रखेगा ये, और कितना ध्यान रखते हैं, कोटि सूर्य तिरस्कार जीने अंगी अंग कांति जा रहे न बलदेव महाशय। बोली अब सुनो उन बलदेव महाशय के बारे में जिनकी करोड़ों करोड़ों सूर्य की कांति को भी नष्ट कर देने वाली जिनकी कांति है, ऐसी तीव्र कांति है कि सूरज भी सामने, जैसे सूरज भी सामने अगर हम यहाँ पे बाहर 500 वाट का बल्ब जलाएंगे तो कैसा दिखेगा, अगर बलराम जी आएंगे तो सूरज वैसे दिखेगा। तो अब इनके बारे में सुनो और क्या है इनकी स्थिति। उषण भूमि खर बात अनुजेते अति प्रीत ना देखिया कांपे हृदय। जब देखते हैं कि अभी धूप आ गई है बहुत और सब जगह धूप फैली हुई है, इसकी वजह से गर्मी हो रही है और आसपास उनको कृष्ण नहीं दिखते, ना दिखने पे साधारण स्थिति नहीं होती, इधर ढूंढ के लाओ कहाँ चला गया कानू, उनकी स्थिति क्या होती है, ना देखिया कांपा या हृदय, उनका हृदय कांप उठता है, कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, कानू कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, एक क्षण भी नहीं देख सकते कि कृष्ण को, सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण, इतनी धूप हो रही है, कभी कोई कोई माता पिता भी इतनी भयानक चिंता नहीं करते कि धूप हो रही है बच्चा धूप में कहाँ गया होगा, उनका हृदय कांप उठे। परंतु यहाँ पे बलभद्र का जो हृदय कांप उठता है कि धूप की कहीं किरणें ज्यादा तेजी से है मेरे कानू पे ना पड़ जाए। वात्सल्य किसी वात्सल्य स्नेह कोरी कृष्ण रहे मन धरे कृष्ण यदि जान अन्य स्थाने निमिषे ते ना देखिया अनिमेष आँखी हुईया कृष्ण पथ कोरे निरस्कर। वात्सल्य के स्नेह में डूब करके बलराम जी निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और कैसे चिंतन करते हैं कि यदि कृष्ण किसी कार्य से दूसरे स्थान पर चले गए निमिषित ना देखिए, और वो कितनी देर के लिए चले गए, एक क्षण के लिए चले गए, तो वो क्षण जो है ना बलराम जी स्थिर उस दिशा में हो जाते हैं देखने के लिए कि कृष्ण कब वापस आएंगे और उनकी पलकें झपकना बंद हो जाती है कृष्ण कब वापस आएंगे, और निरंतर एक ही काम करते हैं कृष्ण पथ कोरे निरक्षण, जिस पथ पे श्री कृष्ण गए हैं उस पथ को देखते रहते हैं कब वापस आएंगे कब वापस आएंगे कब वापस आएंगे, और पलकें झपकना उनकी बंद हो जाती है, बस वो देखना चाहते हैं मेरा कानून वापस आ जाए, ठीक ठाक वापस आ जाए। जो प्रेम की जो गाढ़ता होती है उसका ये सिम्टम होता है अनिष्ट की चिंता होना। जब हमारे घर में कोई व्यक्ति लेट हो जाता आने में तो कई सारे ऊटपटांग ख्याल आने लग जाते हैं, ऐसा ना हो गया हो वैसा ना हो गया हो, होता है ना ऐसा कभी कभी, तो ये प्रेम का लक्षण होता है। तो ये गाढ़ प्रेम है बलराम जी के हृदय में, वो सोचते हैं कृष्ण लेट ना हो जाए, कहाँ रह गए कहाँ रह गए, और इतना है कि हमारे तो मन में आता है हम उसको टाल देते हैं, परंतु ये तो सोच करके स्तब्ध हो जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती है और केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं कि वो ठीक ठाक वापस आए कि नहीं आए, जबकि भगवान है कृष्ण। पर प्रेम का एक स्वरूप यह है कि प्रेम इस बात को भुला देता है कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है, क्योंकि जब देखो देवकी मैया के पास जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो चार भुजाओं में थे, शंख चक्र कदा पद्म था उनके हाथ में, और वो साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे, बता रहे हैं मैं भगवान हूं, तो देवकी माता तो उनसे प्रेम करती है, वो कह रही आप फटाफट ये ना अपने दोनों हाथ गायब कर लो नहीं तो कंस को पता लग जाएगा वो आपको मार देगा, मतलब उनको दिख रहा है भगवान है, कंस कंस कुछ भी नहीं कर सकता इनकी, बट फिर भी प्रेम है ना, ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम के कारण भक्त सोचने लगता है कि भगवान का अनिष्ट ना हो जाए। मैं एक प्रभुपाद जी के शिष्य को देखता हूँ, वो रात के समय क्या करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं नरसिंहदेव भगवान की, तो मैं सोचता था कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नरसिंहदेव की स्तुति क्यों करते हैं रोज, मतलब स्तुति में क्या करते हैं, स्तुति में बेसिकली वो है नरसिंह कवच, मेरे हाथ की रक्षा करो मेरे पैर की रक्षा करो। तो एक दिन हमने क्या किया, उस भक्त के कमरे में गए हम और हमने वो बुक उठाई जिसमें से वो पढ़ते हैं, और देखा तो वो बुक में जो श्लोक लिखे हुए हैं वो कंपोज किए हुए हैं, कंपोज नहीं कंपाइल किए हुए हैं अलग अलग जगह से, और उसमें स्तुति क्या हो रही है, यशोदा माई भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रही है कि कृष्ण के चरणों की रक्षा करो कृष्ण के हाथों की रक्षा करो, मैंने कहा सारी दुनिया में ये भक्त प्रचार करते हैं कृष्ण परम भगवान है और खुद उनकी ये भावना है, नरसिंह देव कृष्ण के चरणों की रक्षा करो, नरसिंह देव कृष्ण के चरणों की सारी और कृष्ण के सारी दिशाओं से रक्षा करो, उनके कर्णों की रक्षा करो, उनकी वाणी की रक्षा करो। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त, ये जो है ना बड़ा किलिंग कॉम्बिनेशन है, ये दिखाई नहीं देता संसार में। और जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा ना तो ब्रज गोकुल वृंदावन धाम प्राप्त नहीं होगा, गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ तक जा सकता। फिर जब गोप कुमार के बारे में सुना तुमने, जब गोप कुमार जा रहे थे तो उनको रास्ते में उन शालिग्राम शिला को वो पहचाने नहीं कि मतलब भगवान कितने शक्तिशाली होते हैं। वो बोल रहे ब्राह्मण को ये हमने क्या किया। उन्होंने बताया कि शालिग्राम शिला जो है जगदीश्वर है, तो उन्होंने बाद में उनको पेटी में पैक कर लिया। बोले ये क्या कर दिया, जगदीश्वर को ठीक से खिलाया भी नहीं तुमने, इनका पेट भी नहीं भरा होगा और तुमने इनको बंद कर दिया, इनका सांस घुटेगा। तो वहां पे सनातन गोस्वामी कमेंट करते हैं कि इनके जो सेंटीमेंट्स हैं वो तो जेन्युइन है, अच्छे सेंटीमेंट्स हैं, भावनाएं अच्छी हैं, परंतु केवल ऐसी भावनाएं होने से हमारे को कृष्ण का धाम नहीं मिलेगा, हमारे को तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए कि कृष्ण है क्या चीज। उनको मालूम ही नहीं कि कृष्ण क्या चीज है, कितने शक्तिशाली है। तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे होता है भाई। एक तरफ से मैं मानूं कि कृष्ण परम भगवान है, एक तरफ से मुझे उनकी चिंता हो, इनको भूख लगी होगी, इनको ऐसा होगा वैसा होगा, संभव कैसे है। फिर हमने देखा एक तरफ से शिला प्रभुपाद जी दुनिया भर में बोल रहे हैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो सब जगह सिखा रहे हैं कैसे उनकी सेवा होनी चाहिए, कितनी शुद्धता का पालन होना चाहिए, सारी शक्तियों के पर बार बार एक एक श्लोक कोट कर रहे हैं, परास्त शक्ति विधि वसूयते, उनकी सोचने से पहले उनकी शक्तियां उनका कार्य कर देती है, इतनी सारी शक्तियां हैं, एको भवनाम योगित धाति कामन वही एक सबसे ज्यादा नित्य से नित्यानाम, ऐसे ऐसे श्लोक बोल रहे हैं। और जब प्रभुपाद जी के सामने है भगवान के लिए भोग जा रहा है, अंदर भोग जा रहा है, उस प्लेट में से अभी भोग लग के नहीं आया, भोग जा रहा है, उसको देखना भी नहीं चाहिए, उसको ढक के ले जाया जाता है, उस पर नजर भी नहीं जाए। प्रभुपाद क्या दिखाओ क्या लेके जा रहे हो, बोला प्रभुपाद दिस इज भोगा, बोला ओके ब्रिंग इट, वो खोल के देखा क्या है उसमें से रसगुल्ला उठा के खाया, बोले ले जाओ। तो ये हम नहीं समझ सकते, जिनके हृदय में ऐसा प्रेम आ गया वही समझ सकते हैं कि दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं। गॉड ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी है, तत्व का पूरा ज्ञान भी है, और फिर भी ऐसा लविंग रिलेशनशिप, कोई बात नहीं अपने आदमी है क्या दिक्कत है। तुम क्या चर्चा कर रहे थे, वात्सल्य रस में बलराम जी एक क्षण के लिए जब कृष्ण को नहीं देखते ना तो उनका हृदय कांप उठता है, फट जाता है, वो क्षण उन्हीं को देखते रहना चाहते हैं। और ये प्रेम का स्वभाव है कि अनिष्ट की चिंता होने लगती है, जानते हैं ऐश्वर्य, वो जानते हैं ये कौन है, फिर भी प्रेम ऐसा क्या करें। बाह्य देह एई खेला दास्य साख्य बाल्य लीला ऐसा नित्य लीला जानी अति गुह्य मुख्य रस कृष्ण जाए हेनो वश आनंदांशे रामे ते खानी मदेश्वरी पद भावे नामना श्रीलिता देवी तार कृपा ये सब स्मरण। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से बाल्य साख्य वात्सल्य में श्री कृष्ण की सेवाएं करते हैं, तो इसीलिए बलराम जी को क्या बोला जाता है, गुरु तत्व बोला जाता है, नित्यानंद प्रभु को बोला जाता है अखंड गुरु तत्व। क्या बोलते हैं, अखंड गुरु तत्व। अखंड गुरु तत्व मतलब कि केवल कृपा ही बरसाने के लिए आए हैं, गौरांग महाप्रभु भी कृपाधीश हैं, कृपा देने वाले हैं, परंतु वो न्याय कृपाधीश हैं, थोड़ा वो चेक कर लेते हैं, परंतु नित्यानंद प्रभु का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, पागल है। चैतन्य क्या है, अवधूत नित्यानंद सवा त्यागल चैतन्य दास प्रेम हईला पागल, पागल हो गए हैं वो चैतन्य के प्रेम में, अब किसी को भी दे सकते हैं ये। अब वो बलराम जी इन प्रकार से सेवा करते हैं तो सब लोग क्या बोलते थे, आज तक हमने यही सुना, अभी भी इसी बात का प्रचारण है कि बलराम जी नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनके जितने भी पार्षद हैं वो सब भगवान के साथ साख्य रस का आस्वादन करने वाले हैं, अभिराम ठाकुर और जितने भी और उनके साथ संगीगण हैं वो सब इसी भावना को रखने वाले हैं, साख्य भाव वाले। तो इसीलिए जिनको साख्य रस का आस्वादन करते हैं वो बलराम जी के चरणों की शरण लेते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेते हैं, और जिनको इसके अलावा जो रस बच गए हैं साखे से पहले तक के, तो बलराम जी के नित्यानंद प्रभु की शरण में जा सकते हैं, और जिनको श्रृंगार इत्यादि रस चाहिए वो सब किनकी शरण में जाएं? राधा रानी की शरण में जाएं, गदाधर पंडित की शरण में जाएं, श्री गौर हरि की शरण में जाएं, नित्यानंद प्रभु की शरण में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बलराम जी हैं। बलराम जी तो सखा भावना की रहते हैं, उनको तो जब जब वो वृंदावन में चलते हैं अगर उनको पता लग जाए वहां से श्रीमती राधा रानी आ रही है तो वो रात से रास्ता बदल देते हैं। उनको पता लग जाए कि कृष्ण और राधा रानी कहीं एक साथ है तो उस डायरेक्शन में नहीं जाते, राधा रानी उनके सामने नहीं आती, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण वहां पे एक सोशल वो है ना स्ट्रक्चर की, जिन जो आपके पति होते हैं उनके बड़े भाई के सामने आप छुप के रहते हो। आजकल तो वो चल रहा है विमन लिबरेशन, तो उसमें ये सब नहीं चलता है, उसमें तो किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है, पर वहां क्या आवश्यकता थी कि प्रेम गार्ड बना रहे और सोशल स्ट्रक्चर में आदर सम्मान बना रहे, और उनको मालूम है मैं अगर इनके सामने जाऊंगा तो इनको शर्मिंदगी होगी, क्योंकि ये तो मेरे छोटे भाई की शक्ति है, गर्लफ्रेंड है दूसरी भाषा में बोले तो। एक बार हम मायापुर धाम में थे और पंकज आंगरी प्रभु को जानते सब भक्त लोग, पंकज आंगरी प्रभु एक्सप्लेन कर रहे थे, हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं कि लाल और गाढ़ नीला वस्त्र धारण करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए, सुना है सबने पढ़ा है, डार्क रेड और डार्क ब्लू पहन के नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि एक पैशन एक राजसिंह और एक राम सिंह। पंकज आंगरी प्रभु बोले कि आपको क्या लगता है रूप गोस्वामी के दिमाग में ये बात ही चलनी होगी, राजसिंह और तामसिंह, रूप गोस्वामी थोड़ा ऊपर सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके चिंता का विषय ये था कि अगर नीला कपड़ा कोई पहन के जाएगा तो राधा रानी को शर्म आ जाएगी देख के सामने बलराम जी आ गए, और फिर उनको लीला डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर डार्क रेड बन के जाएगा तो डार्क रेड जटिला पहनती है तो जटिला को देखते ही राधा रानी टेंशन में आ जाएगी, जटिला आ गई, मतलब इसलिए उनकी लीला में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हमारे को ये वस्त्र धारण करके नहीं जाने चाहिए, सैफ्रन चलेंगे। तो वहां तो ये स्थिति होती थी, तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु भी नहीं दे सकते वो सब। तो यहां एक चीज बड़ी विचारणीय है, ऐसे कैसे हो सकता है कि बलराम जी के हृदय में श्रीमती राधा रानी के से प्रेम ना हो कुछ? श्रीमती राधा रानी को वृंदावन में उनका एक नाम है वृंदावन चक्रवर्तिनी का मतलब समझते हो? चक्रवर्ती का मतलब समझते हो? चक्रवर्ती सम्राट क्या मतलब है? पृथ्वी पे जितने भी राजा होंगे वो जो चक्रवर्ती सम्राट है उसके सबोर्डिनेट होंगे। चक्रवर्ती का मतलब जो सेंटर में रहने वाला है, सेंट्रल हीरो, बाकी सब उसके आसपास। जैसे मान लो शीला प्रभुपाद जी बोलो, प्रभुपाद जी हीरो हैं, रियल हीरो। अब उनके पास कई सारे और भी हीरो हैं, कितने सारे उनके शिष्य सब हीरो हैं, आज कितने बड़े लेवल पर प्रचार कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने जोन में हीरो है, बड़े लेवल पे हीरो है, पर इन हीरोज के भी एक हीरो है, वो कौन है? शीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद इज अ सेंट्रल हीरो, हीरो ऑफ एवरीवन। सो चक्रवर्ती, जैसे वे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में लिखते हैं तो लिखते हैं जतिराज गणे परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। यतियों के जो राजा हैं, यति समझिए सन्यासी, जितने यति हैं ऐसे यतियों में कई कई सन्यासियों में राजा हैं, और उन राजाओं के मतलब गुरु हैं, ऐसे सन्यासियों के जो गुरु हैं उन गुरुओं के द्वारा जिनके चरण सेवित हैं वो हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सुजनार बुद्धराधित पाद युगम, जिनके चरण जो हैं अरबों अरबों साधुओं के द्वारा, जो कि भजनोर जित सज्जन कई कर, जो भजन में प्रगाढ़ हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि जो भजन कर रहे हैं उनको नींद आ रही है, अनर्थ आ रहे हैं, जप कर रहे हैं तो मन में कई भावनाएं घूम रही हैं, ऐसे साधु जो भजन में जीते हैं, भजन में स्थिर हैं, ऐसे साधुओं के द्वारा जिनके चरण परिसेवित हैं, वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक बार पुरी महाराज का नाम सुना सब, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, और जब श्रील प्रभुपाद जी भी डिसअपियर हो गए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लगभग सारे शिष्य डिसअपियर हो गए थे, संप्रदाय में जो लीड कर रहे थे उनमें से एक ही शिष्य बचे थे, पुरी महाराज जगन्नाथपुरी में थे। और पुरी महाराज जब उनकी व्यास पूजा थी तो सब भक्तों को पता था ये इनकी आखिरी व्यास पूजा सेलिब्रेशन है, क्योंकि उनका शरीर भी अभी लगभग शरीर छोड़ने की स्थिति में थे। तो उस समय क्या हुआ, जितने भी गौड़िया मठ थे, क्योंकि पूरे सिद्धांत सरस्वती सरस्वत संप्रदाय मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जितने भी फॉलोअर हैं, कोई भी मठ हो चाहे वो इस्कॉन हो, सबके सब में सबसे सीनियर एक ही पर्सनैलिटी रह गई थी। उनकी जब व्यास पूजा थी इस्कॉन से भी कई सारे सीनियर वैष्णव गए, अलग अलग मठों से सब जगह से सीनियर डिवोटीज पहुंचे और भी डिवोटीज पहुंचे, और उस व्यास पूजा सेलिब्रेशन में सैकड़ों हजारों भक्त हो गए। और उनको जब गार्लैंड पहनाए, गार्लैंड उनके हाथ तक आ गए, उन्होंने एक भी नहीं उतारा, और जब उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करी तो पुष्प यहां तक भर गए, महाराज उसमें बैठे रहे, हटाए नहीं पुष्प। वैष्णवों को समझना कितना मुश्किल है, महाराज बैठे, और फिर महाराज के सामने जब माइक लगा तो महाराज बोले, जब कोई सज्जन पुरुष जिसने कृष्ण चरणों में भजन में रति प्राप्त कर ली है, जो संत हो चुका है, जो भजन में जीत चुका है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण हो चुका है, ऐसा संत जब पृथ्वी पे चलना शुरू करता है ये तो स्वाभाविक ही है कि देवी देवता भी उसके ऊपर पुष्प गिराएंगे। तो इसीलिए पुष्पों का गिरना तो स्वाभाविक है, पर मैं हैरान तो इस बात पे हूं कि ऐसे संतों के आसपास जो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर भी फूल गिर जाते हैं। तो बोल रहे कि मतलब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे पुष्प गिरे तो ठीक है, पर मेरी क्वालिटी क्या है कि मैं उनके चरणों को चाटता हुआ कुत्ते की तरह चल रहा था और मेरे ऊपर भी इतने पुष्प गिर गए। तो इसलिए अगर कुत्ता भी बनना है तो वैष्णवों के चरणों में बने, हमें तुम्हारे कुकुर। क्या अद्भुत, क्या इन लोगों का प्रेम है ना ठाकुर जी के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति। मैं शिला एक संत के पास गया था, मैं वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य थे, परंतु वो काफी सीनियर डिसाइपल थे। और ये इनके जब हम गए तो उनको ना हिंदी नहीं आती थी, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी। उनको जैसे पता लगा भक्त आए हैं तो वो इतने मतलब प्रेम में मत थे, वो इतना आकर्षित था उनको, उनको लगा कि साधु आए हैं, बिल्कुल बूढ़े थे काफ़ी, उनका भी अभी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, मैं काफ़ी समय से उस तरफ गया नहीं। तो वो ना देखे भक्त लोग आए हैं इतने सारे, तो फटाफट कपड़े चेंज किए, नया कपड़ा, एक नया एकदम चमकती धोती थी उनके पास, वो पहनी। और पहनी कैसे, क्योंकि सिंपल थे, मुंह उधर कर लिया तो पीछे कौन देख रहा है, कपड़े उतार के सबके सामने चेंज किए, फिर आके बैठे और आके उनके हृदय में भक्त बन में हमारा ठाकुर, हमारा ठाकुर, और बोलना शुरू कर दिए और बोलते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरुदेव। और जब ये बोलने लगते और उनके बारे में बोलते बोलते ऐसा अश्रुपात हो रहा, और वो बोलते जा रहे, और जब उनका जब तक कंठ अवरुद्ध नहीं हो गया, उनकी बोलने की क्षमता खत्म नहीं हो गई, तब तक बोलते रहे। और जब बोलने की क्षमता खत्म हो गई अपने गुरुदेव का स्मरण करके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्मरण करके, वहां से उठे और अंदर चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद आए, बहुत सारे प्रसाद लेके सबको प्रसाद सर्व करने लग गए। जब शिला प्रभुपाद जी काफी दिनों के बाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा था, टेलीग्राम समझते ना, टेलीग्राम पहले एक ही लाइन लिख के भेज दी चला गया, तो उसमें उन्होंने लिख दिया था मैं इस डेट पे आ रहा हूँ। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज छत पे, मठ की छत पे ना घूमते रहे पूरा दिन, ऊपर ही चैंटिंग करते रहे, कहीं नहीं गए। सब शिष्य पूछते कि क्या हुआ गुरुदेव, बोले मेरे मित्र आ रहे हैं, मेरे मित्र अभय बाबू आ रहे हैं, आने वाले हैं, अभय बाबू आने वाले, प्रसाद बना के रखो, सुबह का प्रसाद बनवा लिया, दोपहर का बनवा लिया। और वो सारा दिन ढूंढते रहे क्योंकि टाइम तो मेंशन नहीं था, पूरा दिन छत से हिले नहीं, और बार बार नीचे देखते छत से, फिर आगे घूमते, फिर जाके छत से नीचे देखते, फिर घूमते पूरा दिन। और शाम को जब श्रीला प्रभुपाद जी आए, अभय बाबू आए, जैसे उन्होंने ऊपर से देखा और प्रभुपाद जी ने उनको ऊपर देखा, ये दोनों प्रभुपाद ने अपना बैग वहीं छोड़ा, गेट खुला जैसे छोटा वाला, बैग वहीं छोड़ा और प्रभुपाद भागे तुरंत, जैसे मूवीज में दिखाते ना, उधर से एक दोस्त आ रहा है, इधर से दूसरा जा रहा है। प्रभुपाद जी भागते भागते सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और वहां से भक्ति रक्षक महाराज सीधा भागते भागते सीढ़ियों पे आए और सीढ़ियों के बीच में एक दूसरे का मिलन हुआ और वहीं पे प्रेम वार्ता शुरू हुई। और काफी देर आलिंगन करके एक दूसरे के साथ खड़े रहे और आलिंगन करके ही प्रेम से उनके साथ चर्चा करते रहे और फिर ऊपर गए, आगे चर्चा चली। पर पॉइंट है कि कितना डेस्परेट थे अपने मित्र का दर्शन करने के लिए, इतना प्रेम वैष्णव के समाज में अपने गुरु के चरणों में। तो हम बात कर रहे थे वात्सल्य रस की। तो अब तो सब सोचते हैं कि नित्यानंद प्रभु साक्ष्य रसी दे सकते हैं, है ना। पर अभी अभी हमने गाया हे नौने ताए बिने भाई राधा कृष्णा पाईते नाई, नेता ब्रजे राधा कृष्ण पावे, क्या है बनाई नेताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। राधा कृष्ण तो तब मिलेंगे जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, जब उनकी कृपा होगी तब हमारे को राधा कृष्ण मिलेंगे। कैसे संभव है जब वो स्वयं उस भाव का आस्वादन नहीं करते, तो कैसे संभव है। तो पहले हमारे को यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि बलराम जी उसमें एंटर नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं कि उनको मालूम नहीं है और उसको समझते नहीं है। पर जैसे अभी हाँ पॉइंट हम ये चर्चा कर रहे थे वृंदावन चक्रवर्ती की, चक्रवर्ती सम्राट की चर्चा कर रहे थे। आप सबको याद रखना चाहिए हम चर्चा क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनिए, चक्रवर्ती सम्राट की हम चर्चा कर रहे थे। चक्रवर्ती वृंदावन चक्रवर्तिनी, श्रीमती राधा रानी वृंदावन चक्रवर्तिनी है। जैसे कल एक उत्सव था जिसका नाम है श्री कृष्ण मधुर उत्सव। तो ये श्री कृष्ण मधुर उत्सव क्या है मालूम है आपको, ये श्री जीव गोस्वामी ने इसका पूरा वर्णन किया है, पूरा बहुत लंबी लीला है ये, उसका हम छोटा सा पास टाइम सुनाते हैं छोटा सा। उसमें से क्या हुआ कि एक बार चंद्रावली श्री कृष्ण के पास थी, नहीं पद्मावती, पद्मा और शैव्या जैसे राधा रानी के साथ ललिता और विशाखा रहती है ना हमेशा उनके नित्य संगी, वैसी इनकी सबसे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं चंद्रावली की। चंद्रावली को सब जानते हैं यहाँ पे, हाँ चंद्रावली की जो बेस्ट फ्रेंड है वो है पद्मा और शैव्या। ललिता देवी कहती है दोनों चंडी हैं। इनके आपस में बढ़िया वाली चलती है। तो पद्मा श्री कृष्ण के पास गई, बोली कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए। बोले बस मुझे ये चाहिए कि आप जो है, क्योंकि ना कृष्ण चाहते थे कि राधा रानी को सब वृंदावन की रानी कहें। तो जैसी बात उनको पद्मा को पता लगी तो पद्मा ने बोला कृष्ण को मैं चाहती हूँ मेरे को आपसे एक वर चाहिए, कृष्ण सेवा करिए और वर मांगा। कृष्ण ने बोला बोलो क्या वर चाहिए। बोले मैं ये चाहती हूँ कि आपकी एक ऐसी सखी को वृंदावन की ईश्वरी बनाएं जिसका नाम चंद्र से शुरू होता है। तो श्री कृष्ण एक बार तो मन में सोचे, फिर बोले तथास्तु। जैसी ये बात उन्होंने बोली ये तो बहुत खुश होगी चंद्रा, मतलब चंद्र से शुरू होने वाली चंद्रावली। चंद्रावली को बताया और वहां पे इन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी और जाके बताया ललिता विशाखा को, पता क्या होने वाला है, हे तुम्हारी राधा को कोई नहीं पूछेगा, श्री कृष्ण जो है चंद्रावली को बनाएंगे यहाँ की रानी, ईश्वरी बनाएंगे यहाँ की। तो उन्होंने जाके बात राधा रानी को बताई। राधा रानी बोली अगर ऐसा करना भी था तो मुझसे बात नहीं कर सकते थे। वो भी मान कर गई कि ना बनाए किसी को ठीक है पर चंद्रावली को ही होना चाहिए। तो बहुत नाराज हो गई राधा रानी और लंबी बहुत लंबा पास टाइम है। विशाखा सखी ने जो है, विशाखा सखी गई और वहां पे उसने ऐसा राग गाया जहां पे कृष्ण थे, रागों में बड़ी शक्ति होती है, ऐसा राग गाया कि वहां पे फूल पतझड़ आ गया, सारे फूल सूख गए गुस्से। तो श्री कृष्ण ने बोला प्रॉब्लम क्या है। बोले कि फिर फाइनली कृष्ण को पता लगा कि इनको ये प्रॉब्लम है। कह रहे मुझसे पूछ तो लेते, मेरे को तो याद है ना कि जब राधा रानी एक बार गंधर्विका बन के आई थी और उसमें राधा रानी का नाम था चंद्रकांता, तब राधा रानी भीश्वरी बनाएंगे। और फिर फेस्टिवल का आयोजन किया गया माघ मास की पूर्णिमा पे, जो कल थी नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव भी उसी पे हुआ था। माघ पूर्णिमा पे एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया और उस फेस्टिवल में क्या आयोजन था कि श्रीमती राधा रानी का राज्याभिषेक किया जाएगा और उनको वृंदावन का की स्वामिनी की पदवी दी जाएगी। इसलिए सब लोग उनको स्वामिनी जी बोलते हैं ना, स्वामिनी जी। और वो जैसे आप पुष्टि मार्ग में देखोगे, पुष्टि मार्ग में वो राधा रानी नाम ही नहीं लेते, डरते हैं, वो तो हमेशा क्या बोलते हैं, स्वामिनी स्वामिनी और श्री जी स्वामिनी जी ऐश्वर्य से। तो जब इनको ये आयोजन किया गया, इसमें कई सारे डेमीगॉड्स भी आ रहे, उसमें छाया सूर्य की पत्नी, सची इंद्रदेव की पत्नी, उमा शिव जी की पत्नी, सब ब्रह्माणी सब आए उसमें। और कृष्ण ने उस फेस्टिवल का जो नाम अनाउंस किया वो ये नहीं रखा उसका फेस्टिवल का नाम कि राधा का राज्याभिषेक, क्योंकि ये बात सुन के ना राधा रानी वहाँ से उठ के चली जाएंगी। हम कुछ भक्तों को जानते हैं, वो कहते हैं कि नाम किसी का अनाउंस कर दो हम वहाँ पे आके कीर्तन कर देंगे, हमारा नाम मत अनाउंस करना, हमें अच्छा नहीं लगता, अगर नहीं मूड है तो। उनको भी पता है कि अगर इनका नाम अनाउंस किया तो राधा रानी कहेगी नहीं कराना मुझे, शर्म आती है उनको ना, उनको उनका एक गुड क्वालिटी है, वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ राधा रानी लज्जा। तो इसलिए उसका नाम रखा माधव महोत्सव और श्री कृष्ण मधुर उत्सव। मधुर है, बड़ा मीठा मीठा कुछ होने वाला है, पर ये किसका उत्सव है, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण मधुर उत्सव। और यहाँ पर जब ये अभिषेक होने वाला था तो वो कहती हैं आके, छाया राधा मैं तो सोचती हूँ कि तुम जो है श्री कृष्ण की प्रिया हो तो तुम्हारे को ये छोटे वृंदावन की ईश्वरी बनाने की क्या आवश्यकता, तुम्हारे को तो पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरी बनाना चाहिए था। उमा कहती है रहने दो मैं तुम्हें बताती हूँ, अखिल कोटि ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड में नहीं, तुम तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने तीर्थ स्थल हैं वहां पे भ्रमण करके जितनी पाइटी पाइटी मतलब जितना पुण्य आप प्राप्त कर सकते हो, सब पे दर्शन करने के बाद समय बिताने के बाद जितना पुण्य आप प्राप्त करोगे, जिसमें कि 12 साल में आने वाले कुंभ मेले पे स्नान भी है एक महीने का वो भी आप करोगे, इतना सब कुछ करने के बाद भी जितना पुण्य प्राप्त होगा वो मथुरा नगरी में कुछ क्षणों तक निवास करके कृष्ण नाम लेने में जो पुण्य प्राप्त होता है उससे तुलना नहीं कर सकते। वो कुछ क्षण मथुरा नगरी में हरि नाम लिया आपने और उसका जो पुण्य है उससे आप अखिल कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी शुद्ध स्थान हैं, सबका स्नान करने के बाद भी जो पुण्य है इस पुण्य से उसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पुण्य मिलता है मथुरा में हरि नाम लेके, वो पुण्य क्या देता है, भक्ति देता है, कृष्ण प्रेम देता है। और कृष्ण प्रेम देने वाली चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तीनों लोगों के स्वामी को कंट्रोल में रख सकते हो आप। श्री कृष्ण आकर्षिणी भक्ति का लक्षण है, श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है और कृष्ण कंट्रोल में आ जाते हैं, इसीलिए वो किसी को आसानी से भक्ति नहीं देते, जो मांगो आप दे देंगे, धनम देही यशम देही कहेंगे ले आ जा। इसलिए कुछ लोग अपनी गाड़ी के पीछे लिखा के रखते हैं हमारा बैंक सांवरिया सेठ, तो भगवान कहते हैं ठीक है तेरा बैंक ही बना रहूंगा, कम से कम प्रेम दूंगा, प्रेम किसी को इतनी आसानी से नहीं देते। अब जिस चीज से वो कृष्ण कंट्रोल में हो जाएंगे, तीनों लोगों के स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड क्या हो गए, एक ब्रह्मांड क्या सारी सृष्टि के, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर थोड़ा सा स्वामित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वामी को कंट्रोल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बोले वो मथुरा नगरी में जितनी भक्ति मिलती है उसको जब कंडेंस कर दिया जाए, उसको जब गाढ़ कर दिया जाए और उसके अंदर जो पुण्य मिलने वाले हैं, जो भक्ति मिलने वाली है, उसको जब पूर्ण गाढ़ कर दिया जाए, गाढ़ समझते हैं ना, इंटेंस हो जाए, तब वो श्री वृंदावन धाम के रूप में परिणित होती है ब्रज में। और इस ब्रज की स्वामिनी बनाया जा रहा है श्रीमती राधा रानी को, तो इसका मतलब यही सबसे बेस्ट है इनके लिए। और इसी वजह से उस दिन से श्रीमती राधा रानी का नाम पड़ा वृंदावनेश्वरी। क्या नाम है? वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं मोहन बाबू हमेशा बोलते थे एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जार जैसे नचाए सही कैसे करे नृत्य। सारी दुनिया में तो एक ही ईश्वर है कृष्ण, जिसको जैसे नचाए उसको वो वैसे नृत्य करेगा, सब कृष्ण के दास हैं, परंतु वृंदावन में नहीं, वृंदावन में वो भी दास है, एकली ईश्वरी राधा आर सब भृत्य, वृंदावन में बाकी जितने रहते हैं वो सब दास है, एक ईश्वरी है वहां पे, वो है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। अब ये श्रीमती राधा रानी सिर्फ वृंदावन में एक एक जन प्रेम करता है, हर व्यक्ति श्रीमती राधा रानी से प्रेम करता है। इसलिए आज भी आप वृंदावन में जाओ तो वहां के बच्चे बच्चे आपको बोलते मिलेंगे राधे राधे, सब राधा रानी से प्रेम करते हैं। क्या पूरे ब्रज में एक ही पर्सनैलिटी थी जो राधा रानी से प्रेम नहीं करेगी? क्या केवल बलराम जी राधा रानी से प्रेम नहीं करेंगे? कैसे संभव है, कैसे संभव है? उनके हृदय में भी वैसा ही प्रेम है राधा रानी के प्रति जैसे सब करते हैं, वो भी राधा रानी के चरणों की सेवा करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते, बड़े भाई हैं, कैसे करें? अब अपनी इस भावना से जब कृष्ण बलराम जी विवहल हो गए कि मैं कैसे राधा की सेवा करूं और मैं कृष्ण की भी जैसे राधा सेवा करती है वैसे भी कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि वो तो सारे भावों में करेंगे ना सेवा, एक भाव छूट कैसे जाए? तो जब इस भाव से विवल हो गए उनके, जब ऐसा हुए उनके हृदय में पेन हुआ कि मैं कैसे राधा की सेवा करूं, तो इस भाव से उनके इस भाव से उनकी भी शक्ति उनके जो शरीर की है वो प्रकट हुई सामने। उनका नाम था श्रीमती अनंगमंजरी। क्या नाम है? जो कि राधा रानी की छोटी बहन है। इसलिए बताया जाता है कृष्णस्य शक्ति राधा रामस्य अनंग मंजरी। कृष्ण की शक्ति तो राधा है और राम मतलब बलराम जी की अनंग मंजरी। अब इस रूप में वो कृष्ण की श्रृंगार रस में भी सेवा कर सकते हैं और श्रीमती राधा रानी के चरणों की भी सेवा कर सकते हैं। और जब जैसे हम बताते हैं सच ब्रजेंद्र नंदन जयी सचि सुत हो लो से बलराम होइलो नेताय। कि सचि ब्रजेंद्र नंदन सची माता के पुत्र के रूप में आए और बलदेव नेताय के रूप में आए। अब जरा विचार करने की बात है, क्या वो जो सची नंदन है क्या केवल वो ब्रजेंद्र नंदन है या और भी कुछ है? क्या सिर्फ कृष्ण ही है जो महाप्रभु बन के आए या और भी कुछ है? हाँ, श्रीमती राधा रानी। तो क्या निताय भी वैसे खाली आ जाएंगे फिर सूखे सूखे? तो वो भी जब नित्यानंद प्रभु आते हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन होते हैं जिनका अनंग मंजरी और बलराम। इसीलिए बताया जाता है वसुधा जानवा कांतम नित्यानंदम ईश्वरम अनंग मंजरी रूपाया अवधूतम नमाम्य हम। नमो नित्यानंदाय नमो अनंग मंजरी, नमो नित्यानंदाय न जानवापतये नमः, नमः अनंग कृष्ण स्वरूपाय नमो अनंग मंजरी। मतलब कि जब निताई आए हैं तो वो खाली निताई नहीं है, वो भी साथ में अनंग मंजरी है। और अनंग मंजरी क्योंकि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है और बलराम जी का भी एक्सपेंशन है, इस कारण से वो राधा रानी से भी ज्यादा करुणामयी है। और इस वजह से नित्यानंद प्रभु श्रीमती राधा रानी से भी ज्यादा करुणामय है। कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे तो, पर वो भी बहुत करुणामय है और वो भी बहुत करुणामयी है, दोनों करुणा के स्वरूप है। कृष्ण को बोला जाता है करुणा अवतार और राधा रानी के लिए भी यही बोला जाता है राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी, करुणामृत वहन करने वाली है, करुणामृत से भरी हुई है। और वास्तव में वो जब स्नान करते हैं तो उसमें लिखा है करुणामृत से स्नान करती है, उनका शरीर भी करुणामय है, तो कोई भेद नहीं है उस दृष्टिकोण से करुणा की दृष्टि से। अब ये जो नित्यानंद प्रभु हैं हम देखेंगे कैसे हम समझ सकते हैं कि ये वास्तव में खाली बलराम जी नहीं है। सबसे पहले तो आचार्य बोल रहे हैं, जब नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि हे नो निताय बिने भाई राधा कृष्ण भाई थे, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये खाली बलराम जी हो सकते हैं? मतलब और बलराम जी में भी कोई कमी हो सकती है, पहले तो वही समझना गलत बात है। पर ये जो नित्यानंद प्रभु हैं ये कुछ स्पेशल है, हटके हैं बलराम जी से, क्योंकि बलराम जी जब राधा रानी होती हैं कहीं पर वहां से दूर जाते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। पर यहां पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु बेड़ा संकीर्तन, बेड़ा संकीर्तन सुना सबने? बेड़ा संकीर्तन जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कीर्तन करते थे ना, जो मेन मंदिर है उसके बाहर परिक्रमा करते हुए, तो उसको बेड़ा कीर्तन कहते हैं। और वहां महाप्रभु जब उद्दंड कीर्तन करते थे, हवा में जाते थे, दिखते भी नहीं थे, इतनी तेजी से घूमते थे, और जब जमीन पे गिरते थे तो ऐसा लगता था कि इनका शरीर फट जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु, और वो उस समय पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी के भाव में होते थे, बेसिकली राधा रानी ही अपने उस समय राधा रानी के स्वरूप को प्रकट कर रहे होते थे कि मैं कैसे कृष्ण के विरह में रह सकती हूँ। जब राधा रानी को श्री कृष्ण से विरह होता है तो वो कहती हैं अपनी सखियों को, मुझे ले चलो यहां से, मुझे जल्दी ले चलो, और मुझे कहां लेके चलो, केली कदंबे रकुले, जहां वहां लेके चलो, जमुना तटीनी कूले, जमुना तटीनी कूले, केली कदंबे रमूले, मोरे लैया चलो त्वराय। हे सखियों, मेरे को जल्दी से यमुना के तट पे जहाँ पे कदम के वृक्ष है वहां ले जाओ, और वहां जाके क्या करो, जमुना मृति कलोए, जमुना की मूर्ति लेके लिपो सर्व गाय, और मेरी सारे देह के ऊपर उस पर लिपन करो, और उसके ऊपर क्या करो, श्याम नाम तदुपरि लिखो सब सहचरी, हे सहचरी उसके ऊपर श्याम नाम लिख दो, क्योंकि मैं तो कृष्ण के विरह में मर रही हूँ और मेरा शरीर तप रहा है, प्राण त्याग दूंगी मैं, और ऐसी स्थिति में मैं कृष्ण का आलिंगन करना चाहती हूँ, अगर इसके ऊपर तुम कृष्ण नाम लिख दोगे मेरे ऊपर तो वो तो कृष्ण ही हो जाएंगे, कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। और उसके ऊपर क्या करो, तुलसी मंजरी दियाता, और उसके ऊपर तुलसी मंजरी डालो, मेरे आसपास बैठो, हमारा बेष्ट न कोरी, बोलो सब हरी हरी, जखाना पराना बहिरा, मेरे आसपास बैठो और जोर जोर से हरी हरी का उच्चारण करो जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। महाप्रभु इसी भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं हरी हरी का उच्चारण करते हुए, और इसलिए बार बार जमीन के ऊपर अपने आप को पटक रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बार बार उनको अपनी गोद में ले रहे हैं, जो कि बलराम जी नहीं कर सकते। और ये सेवा कौन करती हैं, ललिता देवी करती हैं, विशाखा देवी करती हैं, अनंग मंजरी करती हैं, और नित्यानंद प्रभु ये सेवा कर रहे हैं। तो इसका मतलब नित्यानंद प्रभु बड़ी ही स्पेशल पर्सनैलिटी है, यूनिक पर्सनैलिटी है, इतनी सारी फीलिंग्स कृष्ण के लिए एक साथ अपने हृदय में रखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ कृष्ण की सेवा के लिए रखें वो रखते हैं, और दूसरों को भी इन फीलिंग्स का दान देते हैं, उस भावों का दान देते हैं, जो उनके चरणों की शरण लेता है, जो हरि नाम को अपने जीवन में लेता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का बिजनेस क्या है, नाम वितरण। सुरभि कुंजते नामे हट खुले छे, जब वो सुरभि कुंज में गए, आप में से सब लोग गए होंगे सुरभि कुंज, अब वहां पे सुंदर मंदिर भी बन गया है, अवधूत महाराज ने बड़ी मेहनत करके सिंगल हैंडेडली बनाया वो। अब वहां जब नित्यानंद प्रभु गए, जब बंगाल में आए, तो फिर वहां बैठ के महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने अपना बिजनेस शुरू किया, एक महीना वहां पे बैठ के नित्यानंद प्रभु केवल चैंटिंग किए, और वहां से नित्यानंद प्रभु ने नाम का बाजार खोला, वो स्थान है जहां से प्रीचिंग शुरू हुई फुल फ्लैश। तो नित्यानंद प्रभु का बिजनेस है ये, और जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में सहायता करेगा, जैसे जयवदा का महाराज बोल रहे हैं, जो भी गंभीरता से हरि नाम का उच्चारण करेगा और दूसरों को देगा, नित्यानंद प्रभु उसके ऊपर एक्सट्रीमली मर्सीफुल हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे को ना, वी शुड डिवाइस न्यू प्लान्स टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स, दूसरों को कैसे हरि नाम दे सके। जब हम ऐसे गाढ़ रूप से उसके अंदर जाएंगे तो फिर हमारे साथ भी वो स्थिति आएगी, हम भी उस स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ना, अभी भाव तरंग में ऐसी स्थिति आएगी कि एक दिन क्या होगा, जब आप भक्ति करोगे, भक्ति करते करते क्या होगा, आपका हृदय जब कृष्ण प्रेम से गाढ़ हो जाएगा, आपके हृदय में नाम के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, और नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा जागृत होगी, तो एक दिन क्या होगा कि आप जब आंखें खोलोगे सोने के बाद, या जब करते करते अपनी आंखें खोलोगे, तो सामने आपको एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई नजर आएगी, किशोरी होगी वो, और वो बहुत सुंदर होगी, बहुत आकर्षक होगी, और उसका नाम होगा अनंग मंजरी, और ये अनंग मंजरी आपको क्या करेगी, लेके जाएगी श्री रूप मंजरी के पास, और बोलेगी एह नवदासी, श्री रूप को बोले कि ये नवदासी है, इसको अपनी सेवा में लगाओ, बोले तब आपको बहुत शर्म आएगी पहली बार मिलते हैं। खैर, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये दूर दूर तक भी हमारे अंडरस्टैंडिंग से और हमारे भावों से बाहर है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव है, इसका हम इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, इसके अंदर कुछ हृदय वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसी भावना भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जब हम वो भी अनंग मंजरी और जानवा माता के चरणों की शरण की बात कर रहे हैं और वो हमारे को जिनको हम बोलते हैं रूपानुगत, तो रूप गोस्वामी के चरणों की शरण दिलाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी क्या बोले कि नित्यानंद जहार कृपा से पाइने रूप सनातन, नित्यानंद प्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी के चरण मिले। और वही बात भक्ति विनोद ठाकुर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जानवा माता की कृपा से, मतलब क्या नाम है, अथवा अनंग मंजरी की कृपा से हमारे को शिला रूप श्री रूप मिलेंगे। तो ये जो भक्ति की शुरुआत से लेकर जो शुरुआती आनंद है, नित्य आनंद, जो नित्य अपने भक्तों को आनंद देने में रत है वो नित्य आनंद, जो नित्य कृष्ण को आनंद देने में रत है वो नित्य आनंद, और जो नित्य कृष्ण सेवा का आनंद आस्वादन करते हैं वो नित्य आनंद, वो हमारे को भक्ति के शुरुआत से लेकर पहले दिन से कीर्तन रस से नाचना गाने से लेके और उस नाचने गाने को इंटेंसिफाई करके उस लेवल तक जहां के बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते वहां तक का प्रेम देने में समर्थ है श्रीमद् नित्यानंद प्रभु। और वो हमसे इतनी आशा रखते हैं कि हम उनकी प्रसन्नता के लिए सड़कों पे जाएं, हरिनाम संकीर्तन करें, विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन सड़कों पे जाके। मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है जब हम रेगुलर हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते थे तो उस समय विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की कृपा को फील कर पाते थे। और जब ऐसी परिस्थिति जब भी आती है सेवाओं में, जब मेंटल एंजाइटी बढ़ जाती है, चारों तरफ से प्रेशर होता है, हर तरफ से इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे होते हैं, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, और उस बीच में जब सेवा करनी होती है, जब ऐसी एंजाइटी में जब कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तब भी विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की मर्सी फील कर सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु देखना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं उनके लिए, उनकी सेवा के लिए, प्रचार के लिए। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि हम सब जनरली ये सब एक जनरल टर्म है हमारे इस्कॉन में, अरे बहुत पॉलिटिक्स समझ लो, पॉलिटिक्स से बच गए हो, अरे आप नहीं बोल रहे ये बात, जिसने इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी है उसने बोली है ये बात, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोली है ये बात, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भक्ति विनोद ठाकुर को लेटर लिखा, आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन टू स्प्रेड द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड द शिक्षा शिक्षा ऑफ लॉर्ड चैतन्य। व्हाट इज द शिक्षा ऑफ लॉर्ड चैतन्य? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं बिकॉज देर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन वे टू फुलफिल द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, एज लॉर्ड चैतन्य हैज सेड, पृथ्वी ते आचे जत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे मोर नाम, पृथ्वी पे जितने भी नगर आदि ग्राम है सब जगह मेरे नामों का प्रचार होगा। ये केवल तभी पूरा हो सकता है वेन देर विल बी एन इन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन। बट बोलते हैं, और वो अपने पिताजी को, जैसे उनके जो बाकी भाई थे ललित प्रसाद जी, वो उनको बोलते थे पिताजी को बाबू, बाबू बोला करते थे। पर भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो उनके पुत्र हैं वो कहते थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर, कभी भी पिताजी नहीं बोला उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ही बोलते थे। और उनको बोलते पर प्रभु As soon as there will be an institution, there will be a flow of money, position, money and position. And wherever there is a flow of money and position, there is natural, is a natural byproduct of money and position is hypocrisy, cheating, politics. All these things are inevitable. But what to do? There is no other way to spread Krishna consciousness. We need an institution. तो जैसे इंस्टीट्यूशन आएगा नेचुरली ये सब होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है यहाँ पे, पोजीशन है, नेम फेम एडोरेशन है, इतना सब मिलेगा तो आदमी उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए या उस पोजीशन पे आने के लिए रहेगा। सब बद्धजीव है हम सब, ऐसा नहीं है कि कोई जो व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है वही है, हम बद्धजीव नहीं है, सब बद्धजीव है। और हम सब अपनी अपनी पोजीशन को ठीक बनाए रखने के लिए अपने अपने लेवल पे करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, घरों में भी होती है, सब जगह सब लोग करते हैं। पर हमारे को देखना क्या है पॉजिटिव साइड, क्योंकि इसी इंस्टीट्यूशन में कुछ कई लोग महाभागवत बनकर के धाम भी जा रहे श्री कृष्ण के। मैं आंध्रपुर के साथ था और आंध्रपुर कीर्तन कर रहे थे, रास पूर्णिमा का दिन था, शारदीय रास पूर्णिमा, और कीर्तन करते करते प्रभु जी बाहर आ गए और प्रभुपाद समाधि मंदिर में नाचते नाचते कीर्तन कर रहे थे और फिर बैठ गए और बैठ के जोर जोर से जमीन पे हाथ मार मार के चिल्लाते हुए कीर्तन कर रहे थे। प्रभु जी हारमोनियम नहीं बजा रहे, दोनों हाथ जमीन पे मार रहे थे, और चिल्ला रहे थे गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल। और फिर उसके बाद प्रभुजी ने स्टेटमेंट बोली, Who says devotees from ISKCON cannot go back home back to Godhead? Who says Prabhupada cannot take back home back to Godhead? I am going back home back to Godhead and Srila Prabhupada is taking me. Whoever will help me will also go with me. बोले और हमने देखा गौर गोविंद महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य थे और कितने अभी जो हमारे को वैष्णव दिख रहे हैं प्रेजेंट, कई सारे वैष्णव उनके अंदर सारे जो भक्ति के भाव भक्ति के नौ लक्षण के नौ लक्षण दिखाई देते हैं, व्यर्थ कालकों में क्षण तक अपने सेवा में व्यर्थ नहीं गवाते दिख रहे। तो वो एडवांसमेंट भी इसी इंस्टीट्यूशन में हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या देखेंगे, पर जितनी एंजाइटी लेंगे उतना ज्यादा हमारा बेनिफिट होगा। जितनी हम एंजाइटी लेंगे कृष्ण के लिए उतना हमारा बेनिफिट होगा। वी हैव टू टेक एंजाइटी फॉर कृष्णा, वी हैव टू टेक। हम सारी चीजों के लिए एंजाइटी लेते हैं, अपने बच्चों के लिए लेते हैं, अपने घर के लिए लेते हैं, अपनी जॉब के लिए लेते हैं, अपनी पत्नी के लिए लेते हैं, अपने पति के लिए लेते हैं, अपनी हेल्थ के लिए लेते हैं, बट वी डोंट टेक एंजाइटी फॉर कृष्णा। एंजाइटी यही है ना कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम कृष्ण की सेवा करने को तैयार हो, दैट इज अ कॉल एंजाइटी। सब कुछ सही हो, सब कुछ स्मूथ चले और उसमें हम सेवा करें वो तो अच्छा ही है, पर जब हम विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं 10 times ज्यादा 100 times ज्यादा मर्सी मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति में सेवा का ज्यादा लाभ है, जहां पे सर्विस की ज्यादा नेसेसिटी होती है वहां पे ज्यादा लाभ है। हम जब विचार करें कि हम जाएं और सब कुछ अनुकूल हो और हम सेवा करें तो कोई भी गलत प्रभु जी, बट सेवा जब हम विपरीत परिस्थितियों में गए तो नित्यानंद प्रभु देखना चाहते हैं इस मिशन के, नित्यानंद प्रभु का मिशन है ये जो आंदोलन है, नित्यानंद प्रभु का आंदोलन है। वो देखना चाहते हैं कि हम कुछ करने को तैयार है, हमारे हृदय में सामर्थ्य नहीं है, हमारे में सामर्थ्य नहीं अपने अनर्थों को दूर करें, पर जब हम उनके लिए एंजाइटी लेते हैं तो वो इन एफर्ट्स को देख करके हमारे हृदय को साफ कर देते हैं, वो हमारे को असली में भक्ति देते हैं। फिर एक बार एक भक्त, उन्होंने मंदिर में जाना बंद कर दिया था अमेरिका में एक मंदिर में, और जब उस मंदिर में उन्होंने जाना बंद कर दिया तो जब वहां पे श्री गोपाल कृष्ण महाराज पहुंचे तो उन्होंने बोला आप मंदिर नहीं जाते आजकल? बोले नहीं। बोले बिकॉज देर इज सो मच पॉलिटिक्स। तो महाराज ने उत्तर दिया जहां पे ज्यादा पॉलिटिक्स है वहां पे आप ज्यादा भक्ति मनोती करोगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हैं। हमारे को अपना बिजनेस देखना चाहिए ना, कम टाइम में ज्यादा ले निकालो तो उसके लिए मेहनत तो थोड़ी लगती है, पर कम टाइम में ज्यादा, कम इन्वेस्टमेंट आउटपुट ज्यादा, रिजल्ट ज्यादा। वो तो तभी होगा जब विपरीत परिस्थिति में करेंगे, फेवरेबल सिचुएशन में तो सब लोग सेवा करने के। और इसलिए ये देखना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु कौन इन परिस्थितियों में भी एंजाइटी लेने को तैयार है, कौन सड़कों पे निकलने को तैयार है। सड़कों पे कौन जाता है, सबको शर्म आती है, पर जब रेगुलर कोई सड़कों पे जाने को तैयार है, धूल खाने को तैयार है, धुआं खाने को तैयार है, जैसे हम देखते हैं मधुसूदन पूजा को सड़कों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं तो वापस में उनके यहाँ पे नाक के आसपास सब काला हो जाता है और हाथ पैरों पैर जल जाते हैं कई बार उनके गर्मियों के दिनों में। देखते हैं नित्यानंद प्रभु की कितना सीरियस है ये व्यक्ति। नित्यानंद प्रभु ना आंखें बंद करके बस अपना भंडार खोल देते हैं उसके सामने, ये सारी भक्ति इसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि व्यक्ति जैन है। सो अगर कोई कहे, एक बार किसी ने उमापति महाराज से पूछा कि महाराज हमारे इतने एफर्ट करने के बाद हमारे को कृपा मिलेगी, देन हाउ वी कैन से दिस मर्सी इज कॉजलेस? सही बात है ना, मर्सी ऐसी कॉजलेस है कि हम अपनी हजारों सालों तक की मेहनत के बाद भी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे प्रयासों में इतनी शक्ति नहीं है कि कृष्ण को नीचे लाके खड़ा करें, पर हमारे प्रयासों से कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति सीरियस है, तो बस वो हमारे प्रयास इसलिए हैं कि उनको कन्विंस करने के लिए कि हम चाहते हैं उनको हमें दे। और ये नित्यानंद प्रभु का मोमेंट है, जितने लोग भी इसमें भाग लेंगे सिंसियरली श्री कृष्ण चरणों की सेवा के लिए, प्रचार के लिए, अपने भजन को बढ़ाने के लिए, नित्यानंद प्रभु की उसकी विशेष कृपा होगी और बहुत तेजी से वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। दैट इज फॉर श्योर। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आप सबका विशेष धन्यवाद, आप सबने मुझे भी अवसर प्रदान किया कि मैं श्रीमद् नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर सकूं, और 3 दिन तक आप आए भी रेगुलरली, और इसमें मैं विशेष धन्यवाद इनका भी देना चाहता हूँ, आशीष मित्तल प्रभु और अचेत हरि प्रभु का। इन दोनों ने सारी अरेंजमेंट करी, बोले कि प्रभु जी आप कथा करने आओ, बाकी अरेंजमेंट हम देख लेंगे। तो ये दोनों ने बहुत विशेष हेल्प भी करी, जिससे कि अच्छे से कथा कीर्तन हो सके और यहाँ पे जल्दी से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होकर ठाकुर जी के विग्रह यहाँ पे आए, ठाकुर जी हम पे प्रसन्न हो, आप सब वो भी प्रार्थना करें। पर आप सब भी मुझे भी प्लीज आशीर्वाद दीजिए, ये जो सारी बातें मैंने आपको अभी सामने बोली हैं, शास्त्रों से बोली हैं, नित्यानंद प्रभु के विषय में, नित्यानंद प्रभु की शिक्षाओं के विषय में, हृदय से उनका पालन करके गुरुदेव को प्रसन्न कर सकें, श्री हरि नाम की सेवा कर सकें और हृदय से नाम से कीर्तन कर सकें अपराधों से, सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीम नित्यानंद प्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु कथामृत की, इथाय गौर प्रेमानंदे। अगर समय है हमारे पास 5-7 मिनट प्रश्न ले सकते हैं हम, एक दो अगर कोई भक्त पूछना चाहे। क्यों, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो 5-7 मिनट जब तक प्रसाद आ रहा है हमसे, इसीलिए प्रसाद लेट किया। मेरे को याद नहीं आ रहा, भीम ने चक्र फेंका था। हाँ, वो जो चक्र फेंका था भीम ने फेंका था, भीष्म ने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये वो वाला चक्र था जिसको भीष्म देव को मारने के लिए जा रहे थे और फिर वो चक्र फेंक दिया था। अब भगवान फेंकेंगे तो हाथ पास तो गिरेगा नहीं, तो वो जाके उधर राड़ देश में वो चक्र गिरा था, इसलिए उसका नाम एक पे चक्का हो गया, उसको चक्का नाम था पहले उसका नाम, फिर वो धीरे धीरे एक चक्र हो गया, एक चक्का था। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। सही बात है, भगवान जब कुछ एक भी काम करते हैं, हम जैसे एक दो दिन पहले चर्चा कर रहे थे, उसमें अपने कई सारे कार्य पूरे कर लेते हैं। हो सकता है कि भगवान उसी समय इंडिकेशन भी दे लेंगे कि देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, हो सकता है, बट आई डोंट नो, अगर किसी और को पता हो तो बता सकते हैं। यस प्रश्न रहते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का उत्तर मेरे को मेरे पास सबसे पहली जो भेंट थी श्रीपाद आइंगर प्रभु से, उसने दिया था उन्होंने। और आइंगर प्रभु बता रहे थे कि वो प्रतिदिन प्रभु जी 116 माला का जप करते थे, 116 माला जप करते थे। प्रभु जी बता रहे थे कि 50% से ज्यादा जप जो है वो अपना वो गौर नित्यानंद नामों का करते हैं। पर हम तो गौर नित्यानंद के नामों का तो जप नहीं कर सकते, हरे कृष्ण महामंत्र का करना है। तो प्रभु जी बोले कि करना तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही है, क्योंकि हमें नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना है, जबकि उनके नामों में अपराध नहीं है, क्योंकि आप गौर निताय के नामों का उच्चारण करोगे अपराध नहीं लगेगा, कृष्ण नाम अपराध उच्चारण करोगे अपराध लगेगा। तो क्या हमारे को गौर निताय के नामों का उच्चारण करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम तो नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। और महाप्रभु क्या कहते हैं, यदि आमा प्रति प्रीति हैया चे तुमार, कृष्ण बिना व्यतिरिक्त ना भजिरा, मेरे प्रति यदि प्रीति है तो केवल कृष्ण नाम का उच्चारण करें। बोले मैं क्या कर, और मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ अपराधों से, शुद्ध नाम लेना चाहता हूँ। अगर गौर निताय के नामों का आप उच्चारण कर रहे हो, निताय गौरांग निताय गौरांग, इट मीन्स यू आर चैंटिंग शुद्ध नाम, अपराध का विचार ही नहीं, तो शुद्ध हो गया। तो प्रभु जी बोले इस चीज को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मुख से उच्चारण करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन में क्या चल रहा होता है, गदाई गौर गदाई गौर 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 गदाई गदाई, जानवा निताय जानवा निताय 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 जानवा जानवा, गदाई गौर गदाई गौर 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 गदाई गदाई, जानवा निताय जानवा निताय 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 जानवा जानवा। तो जानवा शक्ति है, अनंजनी है, और राम नित्यानंद राम, और मैं भी ऐसा ही प्रयास करता हूँ, और ये बहुत इफेक्टिव, क्योंकि शुद्ध नाम है। शुद्ध नाम का अर्थ ये मत मानना कि प्रेम नाम हो गया। जब आप गौर निताय के नामों का उच्चारण करते हो तो जी बोला, इट डजंट मीन दैट यू आर चैंटिंग द प्योर नेम, यू आर चैंटिंग द रियल नेम, दैट डजंट मीन दैट यू आर चैंटिंग द प्योर नेम, बट दैट मीन्स योर ऑफेंसेस आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड, आपके ऑफेंसेस को कंसीडरेशन में नहीं लिया जा रहा। हमारा तो प्रयास तो करना है बचने का भी, बट एट द सेम टाइम ये बड़ा फास्ट तरीका है, और शास्त्र कई जगह बताते हैं कि जब हम गौर निताई की सेवा करते करते इस लेवल पे आएंगे कि हम राधा कृष्ण को समझ पाए और फिर हम राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण कर पाएंगे, और जब हम राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि गौर निताई की सेवा कितनी महान है, स्टिल हायर, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे नहीं। इसलिए हम ऐसा भी भाव रख सकते हैं मन में, जानवा निताय चांदवा निताय 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 चांदवा चांद प्योर नहीं शुद्ध नाम, ठीक है प्रभु। और किसी का प्रश्न कोई? पक्की बिजनेस वाली है, जगाई मधाई तक को कृपा दे दी, हमारे को डायरेक्ट क्यों नहीं देते, हमारे को क्यों देखना चाहते हैं, है ना? इसलिए देखना चाहते हैं, जब नित्यानंद प्रभु फिजिकली प्रेजेंट थे तो उस समय एक ही चीज बट रही थी, उसको बोलते थे कृपा सिद्धि। अभी भी कृपा सिद्धि है, पर नित्यानंद प्रभु अगर सबको ऐसी देने लग जाएंगे, उस समय तो आए थे तो वो टाइम ऐसा था कि उस समय भंडार सारे खुले हुए थे, उस समय हम पता नहीं कहाँ थे, किसी और ब्रह्मांड में थे या कीड़े मकोड़े बनके मछली बनके गंगा जी के जल की बजाय समुद्र के जल में या किसी ऐसे जगह पे थे जहाँ पे हमारा कोई कनेक्शन नहीं हो पाया नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि बताते हैं कि उस समय जितने लोग भी नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आए सब उद्धार हो गया सबका, तो इसका मतलब हम नहीं आए। पर अब वो अगर हर टाइम वो यही वाला बिजनेस चालू रखेंगे एकदम एग्जैक्ट पैसा ही, तो क्या होगा कि भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम में वो देखना चाहते हैं कि हम भी उनसे प्रेम चाहते हैं या नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं हम भी प्रेम चाहते हैं या नहीं चाहते, इसीलिए वो पहले चेक करते हैं इसको प्रेम चाहिए या नहीं चाहिए, कहते चाहिए आओ बताओ प्रेम में क्या क्या होना चाहिए, मेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए, भक्तों से प्रेम करना चाहिए, और करते हो आप करते हैं ठीक है यस चलो आ जाऊंगा, सिंपल एंट्री है, ठीक है ना। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण कथामृतम की, साई गौर प्रेमानंदे वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जय सब भक्त वृंद की जय। हो गया आप, तो मैं भी हट रहा हूँ, बोल दो भैया ये वहां पर साधे बोलेगी अब वो आप डिसाइड कर।